Yes, sure. Are comfortable? All okay?
Yeah, I'm all fine. Not scared of the camera.
Must be tired.
Why?
Tour. A tour. All
तुम
the way.
सवाल करो ना, इस पे पूछो ना।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. दिस इज अदील आरफीन फ्रॉम मद्रार इंस्टीट्यूट. और बहुत ही इंतज़ार के बाद, बहुत सारी गुजारिशों के बाद और बहुत मेहनतों के बाद आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारीफ के, किसी मजीद मारफत के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं. एक अजीम मोटिवेशनल स्पीकर बोलें या कि एक आलिम दीन बोलें या एक कौम की खिदमत करने वाला खादिम बोलें, हमारे साथ आज मौजूद हैं फजीलत और शेख आतिफ अहमद हमीद हफीज़ाउल्लाह. शेख, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह खैर। वैसे इतने हैवी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत
नहीं,
नहीं थी।
इसमें अभी भी जो है वो
नहीं
कुछ
नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आई एम जस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। हाउ आर यू?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आपको होस्ट कर रहा हूँ, कोई एक
इट्स
आम शख्सियत को नहीं कर रहा तो थोड़ा मुश्किल होता है.
ओके। बट आई थिंक स्पेंट अराउंड 8-9 years टुगेदर एंड आई थिंक यू कैन ब्रेक द आइस वेरी
स्टिल जितना वक्त गुजर रहा है आप माशाल्लाह से इर्तका तरक्की के साथ साथ जो है
ऐसी कोई बात
उतना जो है वो बहरहाल. और
नहीं।
आप माशाल्लाह से वैसे बड़ी मुश्किल से, सब कह रहे थे कि भाई शेख आतिफ का वेबिनार कब है, शेख आतिफ से कब जो है वो सवालों के जवाबात मिलेंगे या उनको जो है वो हम कैमरे में जो है तकरीरों के अलावा लाइव हम देख सकेंगे. तो बड़ी कोशिशें थी, कभी कोई जो है वो सिंध वाले जो है शेख साहब को मधु कर लेते हैं तो शेख साहब उनको भी ना नहीं करते, कभी पंजाब वाले शेख साहब को अक्सर ही मधु कर लेते हैं तो शेख साहब उनको भी ना नहीं कर सकते. तो ये शेख साहब का प्यार है अपनी कौम के लिए, तो आज आज की जो है उन्होंने ये वक्त जो है उन्होंने कौम के नाम किया है. और आप लोगों के तमाम सवालात जो कि असफा के हवाले से हैं, सो दिस वेबिनार इज अगेन, मैं बताते चलूं कि हमारी एक वेबिनार सीरीज चल रही है जिसपे हमारा 2 साल जो कोर्स है जिसमें एक आलिम दीन किस उलूम से, किन उलूम से गुजरता है उसके हवाले से पढ़ाया जाता है मिद्रार के अंदर, और वो शेख साहब ने खुद ही डिवाइस किया है उसके हवाले से ये वेबिनार मुनक्किद किया है. तो इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात जो बीच बीच में आते रहें उनके भी जवाबात इंशाल्लाह मैं दूंगा. दूसरा ये कि शेख आतिफ की जिंदगी के वो अहवाल जो उनके इल्म से ताल्लुक रखते हैं, जो उन्होंने इल्मी सफर तय किया और आज अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम पे जो है पहुंचाया है, उसके हवाले से भी कौम की रहनुमाई होगी. तो आप सब मेरे साथ रहिए और अगर आप लोग कोई भी सवालात हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है सवालात भेज सकते हैं. इंशाल्लाह मैं जरूर शेख से गुजारिश करके उन सवालात के जवाबात जरूर आप तक जो है वो इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा. लेकिन सबसे पहले शेख ये बताएं कि बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने टाइम दिया. दूसरा ये कि एक मुश्किल आपका सफर रहा है, कल ही आप जो है माशाल्लाह से वापस आए हैं अपने जो है वो सफर से, तो मुझे ये बताएं कि असफा के हवाले से लोग जो है वो जानना चाहते हैं. तो लेकिन उससे पहले जब आपका इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे करा रहा था तो अक्सर लोगों को ये होता है कि भाई इज ये मोटिवेशनल स्पीकर और इज ये आलिम दीन और इज ये राइटर, इज ये आइडियोलॉजिस्ट, इज एजुकेशनिस्ट, वॉट इज ही एक्चुअली? लोग बड़े कंफ्यूज हैं सवाले से, लेकिन अवामुन नास के अंदर जो ज्यादा पाया जाता है वो मोटिवेशनल स्पीकर का है. तो मैं चाह रहा हूँ आप खुद तबसरा करते हैं कुछ इसके ऊपर कि वॉट डू यू वॉन्ट
What do I want myself to be
to be
called?
called, yes.
Well, first of all, देखें एक चीज़ है वो मारूफ एक चीज़ हो गई, मतलब एक चीज़ वायरल हो गई, एक चीज़ चलती गई उस हवाले से। वो तो जीत का सफ़र थी मेरे ख्याल से। दैट्स द
जी, द
फर्स्ट
एनईडी क्लब,
NED यूनिवर्सिटी का लेक्चर था। दैट वॉज द फर्स्ट वीडियो दैट गॉट वायरल।
इतना सबर, इतना सबर.
लेकिन उससे पहले भी एक बड़ी जिद्दोजहद है मेरी 10-12-15 सालों की, और आज भी मेरी वो है। लेकिन मैं हमेशा से इंटेलेक्चुअल डोमेन के साथ ही मेरा वक्त गुजरा ज़्यादा, और एकेडमिक डिस्कोर्स के साथ ही मैंने अपनी ज़्यादा वक्त गुजारा। और आज भी मैं इल्म को जो वेटेज देता हूँ जज्बातियात को और शायद लफाजियों को और कलाम को उस तरह से शायद ना देता हूँ। वो और बात है कि जो काम हम करना चाहते थे उसके लिए एक वो जरिया बन गया ज्यादा।
ठीक
मैंने तो और भी बहुत जगहों पे की है। तो बहरहाल आई डू नॉट, मैं ना कहूंगा अपने आप को आलिम दीन, ना मैं अपने आप को कहूंगा ये मोटिवेशनल स्पीकर कहें। हम सिर्फ जो है वो काम कर रहे हैं बस, उसके लिए मीडियम चाहे जो भी हो। तो अभी भी मुझे वैद ने भी पूछा था लाहौर के अंदर
जी
कि आप अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करेंगे। मैं दिल की एक बात बताएं। अच्छा दूसरी बात, ये बहुत सी आरा होती हैं आदमी के बारे में, जैसे जैसे वो ग्रो करता है। आई एम पीपल माइट बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट मी। तो एक तो वो जब मिलेंगे, बातचीत होगी, जिंदगी गुजरती है किसी के साथ तो पता चलता है। बट सीरियसली स्पीकिंग, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद दीज टाइटल्स। इट वॉज नेवर अबाउट टाइटल्स, इट वॉज ऑलवेज अबाउट वर्क। हाँ, ये मीन्स हैं, जरिए हैं कहीं तक बात पहुंचाने की या कहीं पे काम करने की। तो मेरे ख्याल से सिस्टम को हर दौर के अंदर ना रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द नेशन, एंड रिफॉर्मिस्ट किस्म का जो है ना एक एटीट्यूड है कि मतलब हम तो जो बनी हुई चीजें हैं उसकी तजदीद करने के अंदर, उसके हया पे काम करना चाहते हैं। उसके लिए कोई इल्म का टाइटल लगाए ना लगाए, मदरसे की छाप लगाए ना लगाए, मोटिवेशन स्पीकिंग की छाप लगाने लगाए, बट आई माई सेल्फ, मेरा पर्सनल डोमेन इंटेलेक्चुअल इल्म और इसी डोमेन से ही रहा है और मैं इसी में ही रहना पसंद करूंगा।
तो यानी असफा जो है वो आपके उन डोमेन्स के अंदर है जो कि आपकी असल है।
मतलब जो मेरी मदरसे की जिंदगी है, जो मेरा मदरसे का डिस्कोर्स है, और जो मेरा असल, मेरी जो बुनियाद है वो मदरसा ही है, और इट विल ऑलवेज बी द रिलीजियस मदरसा जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी को कनेक्टेड रखा है। तो सफ़ा उसका एक पहलू है जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड है, बट आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ हम्बल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द मदरसास। मैं इसको ज़्यादा पसंद करता
माशाल्लाह शेख, दिस इज सो यू नो
हूँ।
बहुत आजी है ये इसके अंदर
नहीं, बहुत से
लेकिन
लोग
बहरहाल अलकाब जो है वो खुद ना लगाए जाए तो आवाम तो दे ही देती है, क्योंकि तो हर किसी का जो है देखने का नुक्ता नजर अलग होता है।
देखें,
कोई
एक
आपको
देखें, जब आप स्ट्रेटजी पर आते हैं ना किसी चीज की,
हाँ
तो स्ट्रेटजिकली बहुत से काम करने पड़ते हैं। हो सकता है आदमी वो होता नहीं है जो स्ट्रेटजिकली वो लग रहा होता है।
सही
ठीक है, स्ट्रेटजी, तरकीबें, तदबीरें, ये कुछ और चीजें हैं। ये इसमें कॉस्मेटिसिज्म बहुत है, कॉस्मेटिकली आपको बड़े काम करने पड़ते हैं। बाकी इंसान के दिल के अंदर क्या होता है वो तो आखिरी लम्हात भी जिंदगी के बताते हैं, और जो साथ गुजरते हैं वो भी बता देते हैं, और कुछ चीजें इवॉल्व भी हो रही होती हैं। तो आई थिंक इट वॉज नेवर अबाउट टाइटल्स एंड अलकाब, ये हमेशा से एक काम करना, हम काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं बस।
बहरहाल पूरी कौम की आपके साथ दुआएं, अल्लाह
आई
ताला
लव माई
आपके जहूर
पीपल,
को
आई
बहुत
लव माई
कबूल
कंट्री,
करे।
आई लव माई नेशन, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। मैं बहुत मोहब्बत है मुझे अपने पाकिस्तान से, सबसे बड़ी बात ये, वो भी मैंने इसी डिस्कोर्स में सीखी, इसी मदरसों में, इन्हीं पिंड देहातों में, इन्हीं गांव देहातों में मैंने अपना पाकिस्तान डिस्कवर किया, अपनी रूह डिस्कवर की मैंने, मैंने अल्लाह को डिस्कवर किया यहाँ पर। तो दिस विल ऑलवेज बी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, मदरसा जो है।
इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बताते चलूँ सबको, अपनी ऑडियंस को, असफा कोर्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस कोर्स के हवाले से नहीं पता। इट्स बेसिकली अ 2 ईयर्स कोर्स जिसके अंदर जो है उलूम शरिया पढ़ाए जाते हैं, कुरान, हदीस, तफसीर, उसूल वगैरह, जिससे आप कुरान और सुन्नत के फहम को समझ कर जो है उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 साल का कोर्स है, वही जो मदारिस के अंदर पढ़ाया जाता है उसी का आप कंसाइज वर्जन कह लें, जिससे इंशाल्लाह इसके बाकी और भी लेवल्स हैं जो जाते जाते इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव आवर्स के अंदर एक आपको इल्म के अच्छे रुतबे के अंदर फाइज कर सकता है अल्लाह की तौफीक से। तो इस कोर्स के हवाले से हम ये वेबिनार कर रहे हैं। शेख साहब, इसके बारे में मुझे आप ये बताएं कि ये कोर्स की नीड क्यों आई? पाकिस्तान के अंदर इल्म की कमी कहें, दीनी इल्म तो पाको यानी इंडिया पाकिस्तान जैसा सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो एक बड़ा पुराना इल्म है, और काफी जो है वो वाफिर मकदार के अंदर इल्म जो है पाया जाता है, उलमा भी पाए जाते हैं। तो क्या ऐसी नीड जो है पैदा हुई? वैसे आप अपनी स्टोरी किसी को सुनाते नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसमें से आप वो इल्म वाला हिस्सा जो है कि इल्म की जरूरत जो आपको पेश आई है, आपने कहा कि ये माशरे के अंदर आना चाहिए, तो उसके हवाले से आप, मैं समझता हूँ कि आप जो है वहां पर
देखिए, पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी इस चीज़ को समझने की, एंड व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट मुझे ज़िंदगी में मतलब मैं अमेरिका जाके खुश नहीं था। यहाँ से अगर शुरू लूँ, लोग यहाँ से पागल हो रहे होते हैं वहाँ जाने के लिए, बेताब होते हैं, पीपल आर सो डिटर्मिंड एंड एक्साइटेड टू गो इन टू द वेस्ट। मेरे अंदर भी बहरहाल, हमें तो घर वालों ने भेजा था कि शायद वहाँ जाके ठीक हो जाएंगे ये लेकिन मेरा वहाँ पर भी मामला इसलिए ठीक नहीं हुआ बिकॉज मिसफिट्स जो होते हैं वो हमेशा रेवोल्यूशनरी काम उनके अंदर होते हैं। मैंने अपने उस इंकलाब को और उस रेवोल्यूशन को आई थिंक डिस्कवर नहीं किया था उस टाइम तक। बहरहाल मैं 6-7 महीने वहाँ रहने के बावजूद भी मेरा दिल वहाँ उदास हो गया। चाहे सड़कें बड़ी थी, माशरा आज़ाद था, मेरे पास कॉलेज लेवल की बहुत अच्छी दोस्तें थे मेरे, आई हैड अ वेरी गुड सोशल सर्कल ओवर देयर, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी एक लेवल पर, और मुझे आज भी याद है डेलिस में मैं गैस स्टेशन के बाहर बैठा था एंड आई वॉज लुकिंग एट द स्काई और मुझे कोई सेंस समझ नहीं आ रही थी अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि मुझे चीज़ें बॉदर करती थी। बहरहाल जब अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखा रहा था और वो पूरा रूम क्रिएट हो रहा था, तो एक छोटी सी तमीज़ जो थी ना वो मैं बाहर से लेके आया। वो तमीज़ ये थी कि जब हमने दुनिया का इल्म वहाँ के सबसे टॉप नॉच लोगों से पढ़ा है, तो मैं दीन का इल्म जो है ना किसी हल्के आदमी से नहीं पढ़ना चाहता।
सही,
मतलब मैं चाहूँगा कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, जो कदावर जो है वो, जो जाइंट्स जिन्हें हम कहते हैं इस फील्ड के, मैं रसूख रासिखून फिल इल्म जिसे आप कहते हैं, मुझे पता फिर भी नहीं था लेकिन ये तमीज़ थी मुझे कि भाई मैं मतलब यहाँ एरे गेरे, मतलब मैं एक जवान से मैं पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जब तक कि वो गुजरा नहीं होगा चीज़ों से, वो मेच्योरिटी नहीं होगी तो मतलब उससे कैसे पढ़ ले आदमी। इसलिए मैं जवानी के इल्म के ऊपर कलाम भी बहुत करता हूँ कि ये बड़ा बेवकूफ़ाना इल्म होता है जो जवानों का इल्म होता है, अगरचे इल्म होता है, ताबीर होती है उसमें, लेकिन इबारत बगैर तस्किए और बगैर इमारत के वो इबारत क्या होती है वो वक्त बता देता है, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें अफरात तफरीत होती। तो उस वक़्त हमारे एक बड़े अच्छे थे हज़रत जो माशाल्लाह से फिर मेरे ब्रदर इन लॉ बन गए बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई उस ख़ानदान में। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझसे, जब मेरा दीन की तरफ भी रुझान आया, जब दाढ़ी आई थोड़ी सी, और उस वक़्त व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द फेज, तो उस वक़्त इंकलाब बहुत गर्म था 2000 के अंदर, जमात इस्लामी बहुत एक्टिवेटेड थी उस टाइम पे, डॉक्टर इसरार जो थे वो एजुकेटेड तबके के बहुत बड़े उस टाइम पर उनका काम था और चैम्पियन भी बड़े थे वो, और वो बहुत ही एक उस वक़्त की बड़ी लोगों के लिहाज से एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी। तो कुरान अकेडमी का भी बड़ा काम सामने था, तबलीगी जमात वाले भी बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा वो जवानों के ऊपर काम करते हैं एंड दे वॉन्टेड टू ऑल्सो के मैं जाऊँ और उनके साथ भी वक्त लगाऊँ। तो उन दिनों के अंदर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आप ये बताएं इंकलाब कैसे आएगा।
सही।
तो मैंने कहा जिस तरह का माशरे के अंदर बातें चल रही है ना, ये तो लड़ मड़ के कह रहे हैं सारे, ये लड़ मर के ही आएगा और फिर ये अफगानिस्तान के भी हालात कैसे थे आपको पता है।
बिल्कुल ऐसे।
तो उन्होंने मुझे कहा पढ़ के आएगा। मैंने कहा पढ़ के कैसे आएगा इंकलाब, मतलब पढ़ाई तो देख ली अब हमने, तो अब और क्या मजीद पढ़ना होता है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर आप ये मदरसे के अंदर जाके और इस तरह के अगर माहौल में आप हमारे बताए हुए माहौल में जाएंगे,
दालों के साथ
वो मदरसे की दाल कह लें, मदरसे का खाना कह लें आप, और आपने उस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करके अगर ये चीज़ें पढ़ ली तो फिर आपसे बात होगी। तो दिस बिकेम अ सोर्स ऑफ मी गोइंग टू द मदरसा फ्रॉम माई हल्का, जो बड़ा मतलब इंग्लिश किस्म का या बर्गर किस्म का जो माहौल था, तो वहाँ से ये मेरी ट्रांजिशन थी। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन फिर क्या हुआ वो आपका कोई बात है तो आप करें वरना मैं आगे चलाऊं फिर उसको।
मेरे ख्याल से इतनी स्टोरी काफी है।
हाँ लेकिन ये इसके ऊपर तो ये जरूर बात रहेगी कि ये सफ़ा बनाने की जरूरत क्यों है ये इसके बाद मुझे बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक ये था कि इंस्पिरेशन ये थी कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, चीज़ें बदलना चाहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा आपको। लोग पहले लड़ते हैं फिर पढ़ते हैं।
ठीक है,
पहले पढ़ा जाता है फिर लड़ा जाता है।
शेख आतिफ क्या कह रहे हैं सबको, मैं इसकी समरी यहाँ पे दे रहा हूँ, जो पॉइंट शायद आपको जिंदगी में समझ आए या बाद में कभी समझ आए तो पॉइंट लिख लें अपने पास, कि इनकलाब का आगाज या तब्दीली का आगाज या अपने आप को बदलने का आगाज लड़कर झगड़ कर नहीं है बल्कि علم کے ساتھ ہے,
پڑھ کے علم کے ساتھ,
پڑھ کے علم کے ساتھ ہے. شیخ صاحب کا جو سفر ہے علمی سفر, اس کی بنیاد یہی تھی جب شیخ صاحب کے دل کے اندر یہ تشنگی پیدا ہوئی کہ تبدیلی کس طرح آئے گی اور چیزیں بدلیں گی کس طرح, ریفارم کس طرح ہوں گی. تو شیخ صاحب نے اپنے علمی سفر کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا. اور یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنی طالب علمی کی ایج کے اندر ہے, اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہے, یہ اس کے لیے ایک میسج ہے کہ if he wants to change something, وہ نالج علم کے ساتھ ہی ہوگا. وحی کا آغاز بھی علم کے ساتھ ہوا, پہلی وحی بھی علم کے اوپر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کے حوالے سے, دو چیزوں کے حوالے سے دنیا کے اندر بولا تھا, اللہ مجھے اس میں زیادتی عطا کر. ویسے ربی زدنی مالن نہیں بولا, ربی زدنی دولتن نہیں بولا, شہرتن نہیں بولا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ربی زدنی علما, اور آپ نے دودھ کے حوالے سے جو آپ بہت پسند تھا اس کے حوالے سے کہا. تو علم سے جو ہے وہ انسان کا سٹارٹ ہے,
آدم علیہ السلام کی سٹارٹ ہے علم سے.
علم الآدم الاسماء,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب شروع ہوتا ہے, علم الانسان ما علم یعلم. تو مطلب علم ہمیشہ مصداق رہے گا ہر چیز کا, آپ اس کو مائنس کر کے کسی جز کی پر بات نہیں کر سکتے,
بنیاد کہہ سکتے ہیں کسی چیز کی.
مطلب آرٹیکل ہی علم ہے, فساد بھی اسی میں ہی ہوگا,
ٹھیک,
بگاڑ بھی اسی میں ہوگا, عروج بھی قوموں کا اور فرد کا اسی میں سے ہوگا, روحانیت بھی اسی میں سے ہے اور جو ہے جہاد بھی اسی میں سے ہے. دنیا کی ہر چیز کا تعلق علم مائنس کر کے ہوگا تو وہ فسادی ہوگا.
دیکھ رہے ہیں آپ شیخ صاحب جب گہرائی میں لے کے جاتے ہیں باتوں کی, تو کلاس کے اندر بندہ جو ہے گم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے جو ہے وہ اصفہ کے اندر بالخصوص آپ شیخ عاطف سے پورا ایک کورس پڑھنا چاہیں, تو آپ جو ہے اس بار صفا کے اندر ضرور انرول کر سکتے ہیں. صفا کی ہسٹری کے حوالے
سے اس سے پہلے بھی ہم یہ کہیں کہ ابھی ہم نے ایک آنا کہ انقلاب بھی علم سے آتا ہے, دوسرا کلیئرٹی بھی علم سے آئے گی. زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ, آپ کے اگلے والے سوال پہ جانے سے پہلے میں ایڈ آن کر دوں, زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, جو 40 سال کے آدمی کو آج جو ہماری ایج ہے, جو ہم سے سینئر ہیں, جو ہم سے پہلے, وہ ہے کہ واٹ, وائی, کیا, کیوں, کیسے, کب. یہ جو کلیئرٹی, یہ پزل سالونگ جو ہے نا, کہ ہم کیوں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں, علم اس کلیئرٹی کو, اس یقین کو, یقین اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا علم کے بغیر. یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہوگی اگر کوئی کہے کہ وہ علم کی گہرائیوں میں جا کے بغیر یقین تک پہنچ جائے. یقین مشاہدے سے ہوتا ہے, مشاہدہ بھی علم ہے, ایک مشاہدے سے کیا چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے یہ بھی علم ہے. علم کو پڑھنے کے لیے بھی ایک علم ہے, علم پڑھنے کے لیے بھی ایک علم چاہیے آپ کو, آپ کر ہی نہیں سکتے جس کو پھر آپ پری ریکوزٹس کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں. تو بنیاد انسان کی جو کلیئرٹی کی اپنے حوالے سے ہے, زندگی کے حوالے سے ہے, اپنی فیلڈ کے حوالے سے ہے, وہ بغیر علم کے نہیں آئے گی. اور دوسری بات ہے, ایک لیول پر جو سیچوریٹ ہوئے بھی قوم بیٹھی ہوئی ہے نا ہمارے,
صحیح,
جو پہنچ گئے ہیں مگر آگے نہیں جانا چاہتے,
یا یوٹیلیٹی کسی بھی لحاظ سے ان کی سیچوریٹ ہو گئی,
یوٹیلیٹی, جو لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی بھی, یوٹیلیٹی بڑھانے کے لیے بھی علم بڑھانا پڑے گا,
صحیح,
سیٹسفیکشن بڑھانی ہے علم بڑھانا پڑے گا,
جس کو کہتے ہیں بھوک بڑھانے کے لیے بھی جو ہے علم,
اگر آپ نے اپنی سٹرگل کے لیے انیشیٹیوز بڑھانے, علم بڑھانا پڑے گا,
بالکل,
آپ کو بڑی چھلانگ لگانی ہے, علم بڑھانا پڑے گا. بغیر علم بڑھائے آپ کے انسینٹیوز کیسے بڑے ہو جائیں گے, یہ ہو نہیں سکتا. علم از دا آرٹیکل آف ایوری گروتھ دیٹ ایگزٹ ان دا یونیورس.
میرے حساب سے دوسرے سوال کی طرف چلنا چاہوں گا صفا کے حوالے سے. شیخ صاحب یہ کورس, پھر وہی سوال کہ آپ نے یہ کورس جو کنسائز کیا, جو ہم پچھلے ویبینارز کے اندر بتا چکے ہیں لوگوں کو, ہم نے کنسائز کیا ہے وہی علوم جو مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, وہی یہاں پر جو ہے وہ کنسائز ورژن کے اندر آج کی اپلیکیشنز کے ساتھ پڑھائے جا رہے ہیں. تو آپ نے یہ انیشیٹو کیوں لیا؟ ٹھیک ہے, آپ مدرسے گئے پڑھنے کے لیے, آپ نے اس ماحول کے اندر تعلیم حاصل کی کہ تبدیلی اس سے آئے گی, انقلاب اس سے آئے گا, تو آپ نے اس علمی میدان کے اندر ایک ایسا کورس یا ایسا انسٹیٹیوٹ مدرار کے نام سے آپ نے کیوں ڈیوائز کیا کہ جو کہ ایسے کورسز کروائے علم کے لیے؟ تو مدارس
آپ اور کانٹروورشل سوال پوچھے نا, اور کانٹروورشل طریقے سے کہ شیخ آپ یہ بتائیں جب مدارس موجود تھے تو آپ کو اپنی یہ دو اینٹ کی بنانے کی ضرورت کیا تھی, یا آپ یہ بتائیں آپ کو یہ کورس بنانے کی کیوں, حذیفہ بھی بیٹھا ہوا ماشاء اللہ ہمارے پاس یہاں پر, آپ کو ضرورت کیا تھی جب ہمارے پاس 8 سال کا ایک نظام موجود ہے, علیحدہ سے یہ کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں, جو ایمبیگوٹی بھی کہیں ہوگی اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, یہ کورس مدارس کو یا اس 8 سالوں کو ڈیفارم کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی ڈیفیم کرنے کے لیے آیا,
ٹھیک,
یہ ان کو ریفارم کرنے کے لیے آیا, یہ ان کو برج کرنے کے لیے, انفیکٹ ان کو بچانے کے لیے بھی بنایا گیا تھا. आई डिड नॉट डिवाइस दिस कोर्स टू कि मैं उनकी मार्केट खराब कर दूं. मैं यहां से बच्चे तैयार करके मदारिस की तरफ रुख करता था कि क्योंकि एक ब्रांड की मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उसकी ब्रांड मैनेजमेंट, उसका कंटेंट क्रिएशन, उसकी करिकुलम डिजाइनिंग, उसकी सिलेबस मेकिंग, उसकी टीचिंग मेथडोलॉजीज जैसी भी हैं आउट क्लास है. मैं नहीं कहता कि मदरसे की तालीम वाला, मैं तो प्रमोट इसी को करता हूँ, लेकिन साइकोलॉजीज को भी तो सामने रखना है ना आपने. तो मैं तो बल्कि ये मिदरार बनाया गया था ताकि ये आसान कर दे उनकी बात जो उन्हें समझ नहीं आ रही.
ब्रिजिंग द गैप,
इट वॉज ऑलवेज द ब्रिजिंग द गैप, इट वॉज ऑलवेज द जसर, इट वॉज नेवर कि हम कह दें कि जी ये असल है. ये कभी ये दावा ही नहीं रहा मेरा कभी से कि मैं कहूं कि ये असल है. दूसरी बात यहां पर ये है कि हमारी टीम से हम पूछ लें, ऑल इज फाइन, ग्रेट टू गो. पॉइंट यहां पर ये है कि ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई वहां का बच्चा काट के या मैं उनका शेयर काट के यहां अपना नहीं खराब बना रहा, ये मेरे सबको है. मैं यहां तैयार करता हूं और यहां जो भी लोग तैयार होते हैं वो फिर इन्वेस्ट होते हैं मुख्तलिफ अदारों के अंदर. एक इंसेंटिव ये था कि भाई क्योंकि जो देखें स्पोक्समैनशिप तो अब ISPR फौज को भी ISPR बनानी पड़ेगी, ठीक है. फौज अपना नैरेटिव, अपनी कॉम्प्लिकेशंस, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज, अपनी डेप्थ और अपनी डायनामिक्स को हर जनरल कर्नल तो नहीं बयान कर सकता. तो उन्होंने एक इदारा बना दिया भाई कि हमारे नैरेटिव को
ये बयान करेंगे
आगे से. हमारे इस साइड के नैरेटिव को बयान करने के लिए जो लोग कभी सामने आते हुए जो भी होती है, अगर वो प्रोफेशनली भी नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव मेकिंग वाले एक्सपर्ट्स होने चाहिए.
सही.
आप किसी ऐसे शख्स के हाथ में अपनी स्पोक्समैनशिप दे देंगे जिसको नैरेटिव बिल्डिंग के उसूल नहीं पता होते तो वो तो उल्टा और खराब करा देगा आपका.
फसाद क्रिएट कर देगा
और अभी भी आपके सामने सिस्टम में आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है. आगे पॉइंट यहां पर ये है कि एक एजुकेशन सिस्टम है, कि पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है, उसकी जो स्पोक्समैनशिप है उसको सामने आके बताना पड़ता है कि भाई ये कोई ये है क्या, ये खूबसूरती क्या है इसमें, हम करते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हमारे जार्गन्स क्या हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी सोच क्या. ऊपर से भी इंटरनेशनल लॉबी आपके ऊपर अलहदा काम कर रही है, ठीक है. फिर आप ही के हाथ से कुछ इस तरह के ना भी हों, इक्का दुक्का होंगे, कुछ हर सिस्टम के अंदर रोग्स होते हैं, ROGUES वाले इसमें,
ठीक.
एक दूसरा रोग होता है वैफा और एक रोग रोग हर सिस्टम में रोग होते हैं, रोग नेशंस जिसे हम कहते हैं. तो वो रोग हर जगह के होते हैं लेकिन आपके रोग हाईलाइट हो गए दुनिया में एज टेररिस्ट, एज एक्सट्रीमिस्ट, और आज भी एक रोग जो है वो हाईलाइट हो रहा है आगे से.
बिल्कुल ऐसे,
ठीक. हर सिस्टम में रोग होते हैं और हर सिस्टम के रोग जो होते हैं वो फसाद क्रिएट कर रहे होते हैं,
लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको डिफेंड करना हमारा काम.
वो स्पोक्स पर्सन का काम है, वो स्पोक्समैन डिपार्टमेंट का है. मतलब कंट्री का फॉरेन ऑफिस डिफाइन करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी को.
बिल्कुल ऐसे ही
है. आप अगर हर किसी से जाके ये पूछेंगे कि जी आपका पाकिस्तान, आप बताएं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस डिफाइन करेगा.
बिल्कुल ऐसे
ही. UN में हमारा UN का स्पोक्स पर्सन डिफाइन कर रहा है. सो द पर्सन सिटिंग ओवर देयर इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक डिपार्ट है. सो आपने कश्मीर इशू पे बात करनी है, आपने एक्सपर्ट्स ऑफ कश्मीर इशू पे भेजना है. आप बशीर को नहीं भेज सकते आप आगे से.
I remember that बशीर पंचर वाला. 15
years पूरा लगने वाला बशीर पंचर वाले को नहीं आप बोल सकते कि वो नेशनल है. हाँ, जहां पर आपने बताना है कि भाई जी इश्यूज, तो आप इश्यूज फिर किसी बड़े से नहीं पूछते, आप फिर ग्राउंड लेवल के आदमी से पूछते हैं इश्यूज क्या है. हमारा उल्टा सी जब हम इश्यूज पे बात करने पे आते हैं तो सबसे बड़ा जो होता है, जो सबसे प्रिविलेज्ड होता है, वो अंडर प्रिविलेज्ड के इश्यूज कैसे बताएगा.
बिल्कुल ऐसे ही.
जब आपने आइडियोलॉजीज बयान करनी है तो आप आइडियोलॉग्स लेके आएंगे, जब आपने स्पोक्स पर्सनशिप रखनी है तो आप एक्सपर्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स लेके आएंगे, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स लाएंगे, नैरेटिव बिल्डर्स के एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, और जब आपने इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो आप उसको लाएंगे जो समझता है.
बिल्कुल, उस फील्ड का,
उस फील्ड का हो ना हो, उस फील्ड की प्रैक्टिकलिटी. जब आपने मसाइल बताने हैं तो आप गरीब को उठा के लेंगे, गरीब बताएगा ना इस मुल्क के मसाइल क्या होते हैं. आप मसाइल पे जब बात करने के लिए आते हैं तो आप प्रिविलेज्ड आदमी को ले जाते हैं. सिमिलरली ओवर हियर, मदारिस के करिकुलम और मदारिस की एजुकेशन और मदारिस के स्कोप को अगर आपने बयान करना है तो आप उनके अंदर से वो बंदे को लेके आएंगे.
रजुल मिन कौम ही
मैं बंदा हूं आपकी कौम में से. मेरी नजर में ये बहुत वीकनेस थी.
और इसके
अंदर मैं समझता हूं कि किसी फर्स्ट टाइम इंटेलेक्चुअल मैंने जो किसी की बहुत इंटेलेक्चुअल हो ना हो, लेकिन द वे ही वाज पुटिंग हिज केस, अदनान काकाखेल साहब वाज एट टाइम्स
जामे तो रशीद
जो था उनका काम बहुत जबरदस्त था. ही वाज ट्राइंग टू ब्लेंड इन समथिंग, ही वाज ट्राइंग टू गेट द क्रॉप फ्रॉम द सिस्टम. जो एजुकेशनलिस्ट हो, जो आपके डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आई थिंक ही वाज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. अगरचे मैं उनसे आज तक नहीं मिला, लेकिन इफ माई वर्ड इज गोइंग टू हिम, आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क. दूसरी बात यहां पर यह है कि वो ट्रांसलेट कर रहे थे कौम और उलमा के बीच वाला जो गैप था, वो ट्रांसलेशन वहां चल रही थी. दूसरा, व्हेन आई हर्ड हिज स्पीच इन द पार्लियामेंट वंस,
द मुशर्रफ वन,
वेल आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल पार्ट, बट आई थिंक नान काका खेल साहब वॉज वेरी इंप्रेसिव. नॉट बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अगेंस्ट द आर्मी, मेरा ये नैरेटिव नहीं है, बट जो एक उनकी स्पीकिंग पावर थी और एक कन्विंसिंग पावर थी ना, एक मदरसे के प्रोडक्ट का इतना पावरफुल नैरेटिव बिल्ड, मतलब आई वी वर मूव्ड बाय दैट.
स्ट्रेंथन हुई थी बड़ी इमेज बात,
क्योंकि आपने सही बंदे को दिया ना बात, वो जो
राइट पर्सन फॉर द राइट,
राइट पर्सन फॉर द राइट. आप वहां से बताएं तो सही ना भाई, इस इल्म की जरूरत क्या. जब दीनी तालीम की या जो शरी मकासद की बात की जाती है, तो आप अपने 5 इश्यूज डिफेंड करने के लिए तो ले आते हैं, नमाज पढ़ानी है, जनाजा पढ़ाना है, निकाह कराना है. आपने एक रिलीजियस क्लेरिक की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी डिलीवरी है, उसको आपने खुद कन्फाइन किया हुआ 4-6 चीजों के साथ,
इवेंट्स के साथ.
इवेंट्स के साथ, अगर फौत हो गया तो वो ये पढ़ा देगा, शादी हो गई तो ये कर देगा. हालांकि व्हेन आई वेंट ओवर देयर एंड मैंने जब स्कोप देखा, क्योंकि जब आप क्लेरिक को वीक कर रहे हैं तो आप स्कोप को भी वीक कर रहे हैं.
वो एक कॉल आप हमें खुद ही सुनाया करते थे कि लव अली मल मुलू के गालिब इमाम शाफी कहते थे कि अगर वो बादशाहों को पता चल जाए कि माफी कुलूबी ना, कि हमारे सीनों में के अंदर क्या है,
तो वो हाथी,
तो वो आ जाएंगे अपने
हाथी लेके आ जाएंगे
लेके.
हाँ, तो उन्होंने इसको, मेरे ख्याल से ये बहुत वीक रहा, लोगों को पता नहीं था क्या था. फिर इसके अंदर 18 उलूम की बात हम बहुत सुनते थे बचपन के अंदर, 18 उलूम कौन से 18 उलूम है. एक टाइम पर हमने इसके बारे में एक नेगेटिव नैरेटिव भी सुना हमने मार्केट में, कि पता नहीं कौन से 18 उलूम है. 18 उलूम है, 16 उलूम है,
बिल्कुल ऐसी.
और अगर कोई आलिम दीन ये कहता है भैया ये पढ़े बगैर तुम कुरान हदीस में हाथ नहीं डाल सकते, तो वो गलत बात नहीं कर रहा,
ठीक है.
लेकिन उसके बारे में भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ गई कि यार ये तहकीक का दुश्मन है,
ठीक है,
ये सेल्फ स्टडी का दुश्मन.
एक इफरात तफरीत तो हर जगह है,
तो भाई ये, लेकिन ये काम किसका, ये काम पॉलिसी मेकर का होगा ना.
बिल्कुल ऐसे
पॉलिसी मेकर का काम है कि वो अपने ब्रांड को किस तरीके से प्रोजेक्ट करा रहा है आगे से. तो ये चीज मैंने बहुत कम देखी, कि जब हम गए हमने भी देखा, और हमने जब उसका स्कोप देखा और उसकी डायनामिक्स देखी ना, मेरे पहला एहसास ये हुआ द वर्ल्ड नीड्स टू नो व्हाट इज उलूम शरिया. ये मेरा बहुत पहला और बहुत बड़ा माइलस्टोन था जानने के लिए, जिसने मेरी जिंदगी की आगे की पूरी तहरीक बदली, जिसके अंदर शायद एक मोटिवेशन भी आया कि भाई द वर्ल्ड नीड्स टू नो कि एक इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस, इसका फिक्ह, इसका अकीदा, लुगत, ग्रामर एंड डेप्थ एंड द वे दे ओपन स्टफ, उलमा का जो काम, दिस नीड्स टू कम आउट. और ये मैं उस टाइम पर इंग्लिश में तो क्या, उर्दू में भी नहीं मांगा, और वो उर्दू भी ऐसी पुरानी जमाने के लिए, आप हुज्जतुल्लाह बालगा की उर्दू, ये बच्चे भी नहीं पढ़ सकते.
आदिलोस फारसी के
जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह की ये किताब है, ये आप पढ़ ही नहीं सकता उसमें.
बिल्कुल
ऐसी उर्दू है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग हिल जाएंगे उर्दू की वजह से. तो आपका जो काम मौजूद है वो बिल्कुल भी उस नहीं था आसान, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एक नुकसान हुआ, कि एक नैरेटिव यह है लोगों ने छोड़ ही दिया,
ठीक है.
एक नैरेटिव है लोगों ने अपनी इजी वर्जन की जो है ना फॉर्मेट्स बना के, जिसके अंदर उलमा को माइनस किया हुआ है, उलमा को माइनस करके, स्कॉलर्स को माइनस करके, एक जो है ना फिर लोग इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, कि उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो पूरी बेंच आपने
1400 बोलना शुरू हो गया, रुवैबिदा.
मैं इसको रुवैबिदा रुवैबिदा भी कह सकते हैं, कि रुवैबिदा विल स्पीक विदाउट द नॉलेज, रुवैबिदा विल स्पीक विदाउट द डेप्थ, रुवैबिदा विल स्पीक विदाउट द प्रोटोकॉल्स, रुवैबिदा विल स्पीक विदाउट द डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द शरिया. मैं अपने आप को भी इसका अहल नहीं समझता कि मैं बोलूं उसके, लेकिन कम से कम जब जो हमने समझा है, हमने उसको ट्रांसलेट करने के अंदर अपना पूरा खिलास दिखाया, कि आप माने कि भाई जो एक आदमी, एक आलिम या एक क्लेरिक 9600 घंटे के करिकुलम को पढ़ने के बाद फिर वो कोई 10-20 साल लगाता है किसी शेख के अंडर या पर्सनल में और उन प्रिंसिपल्स के अंडर रहता है, उसकी डिसिप्लिन, उसकी डिसिप्लिनरी नॉलेज कितनी स्ट्रांग होगी बनिस्बत के एक आदमी ने किताब खोली है उसमें से अपने एक्सट्रैक्शंस निकाले और वो सही भी हो सकते हैं, मगर उसमें गलती के इम्कान के. मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये सेल्फ एजुकेशन को, ये सेल्फ स्टडी को, चाहे किसी भी फील्ड के हो, लॉक और चेक कैसे लगेगा.
फिर वो आपका कॉल है मन लैस लहु उस्तादुन फउस्तादु शैतान,
मतलब ये जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद। तो ये सनद इसलिए तो रखी गई है कि आपने किससे पढ़ा, आपने उलूम किससे सीखा, आपने प्रिंसिपल किससे सीखे, उन्होंने किससे सीखे, ये लॉक कहां पे लगाएंगे आप इसको। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारी भी डोमेन नहीं है हम भी हाथ नहीं डालते उसके अंदर, लेकिन जो एक मैक्रो, मेरा असल जिहाद जो था वो एक मैक्रो कैनवसिंग सेट करना था जिसके अंदर से माइक्रो स्कॉलर्स तैयार होने थे। तो मैं मैक्रो की जंगें ही लड़ता हूं बड़े बड़े मैदानों के अंदर जाके, जहां सिर्फ मनवाना मकसूद होता है कि आप माने।
स्पेसिफिकेशंस जो है वो बात,
स्पेसिफिकेशन में तो तुम में से कितने आगे हो गए इस टाइम पर, मतलब हम वाकई कितने मसाइल होंगे जिन जुजियात के अंदर हमें नहीं पता होगा अभी, क्योंकि हमारा वो मैदान नहीं रहा। हमारा मैदान ये है कि भाई एक आदमी कहता है आप जो है हाथ काटने की हद क्यों लगाते हैं। बल्कि मैंने ज़ेबिस्ट में एक लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद जो आप मौजूद थे मेरे ख्याल से हुज़ैफ़ा, एंड व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम वाज़ मैंने गैर मुस्लिमों के हुकूक के ऊपर मैंने लेक्चर देना था। तो रात मैंने कहा भाई चलो कोई देखें कोई काम है इसके ऊपर, तो मुझे अरबी का एक मकाला मिल गया, हुकूक गैर मुस्लिमीन फी बिलाद अल मुस्लिमीन, द राइट्स ऑफ द मिनोरिटीज इन द मुस्लिम मुस्लिम कैलिफेट्स ऑन लैंड्स। अब उसके ऊपर वो पीएचडी था, कोई डॉक्टरेट अरबी में मकाला था, उसमें इतना जबरदस्त काम लिखा हुआ था, जो भी आता था मैंने एक्सट्रैक्ट करके एक लेक्चर बना लिया। अगले दिन जाके मैंने गैर मुस्लिमों के हकूक के ऊपर ऐसा जबरदस्त दिया। अब वो एक लिबरल यूनिवर्सिटी भी होगी या सेकुलर यूनिवर्सिटी होगी या जो भी उसकी आइडियोलॉजी होगी, हमने तो यूनिवर्सिटी में ख्याल रखना होता है ना, हम ऐसा तो नहीं बात कर सकते जो पूरा ही पैराडाइम खराब कर दे, क्योंकि फिर तो आप जा ही नहीं सकते किसी यूनिवर्सिटी में। पहला सवाल पता क्या है, शेख इज डेमोक्रेसी शिर्क और नॉट? मैं कह रहा हूं मैं बात कर रहा हूं गैर मुस्लिमों पे। आप दूसरा सवाल ये आया कि आप जो है वो हम देखें अमेरिकन सच इतना फ्रीडम वहां पे इंडिपेंडेंट है, हम आपको मस्जिदें बनाने की इजाजत देते हैं पूरे अमेरिका में बना के देते, आप हिजाज में हमें मंदिर और चर्च बनाने देना? अब ये मुश्किल सवाल है,
ठीक है।
तो मेरा पॉइंट बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज कि इंसेंटिव का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि भाई ट्रांसलेट कराया जाए और सिक्योर कराया जाए और प्रिजर्व कराया जाए। उसके अंदर एक पार्टी जो होगी वो उसी प्रोसेस से गुजरेगी, 8 साल की, 7 साल की, अब तो 6 साल के भी आ गए कोर्स, 5 साल का भी दरस निजामी, और एक पार्टी जो है। अब इस पर आप दूसरा सवाल करें कि भाई अगर कोई हमारे पास पढ़ता है या ये कंसाइज वर्जन में पढ़ता है इसमें खैर क्या है, ये अगला सवाल बनता है
शेख। लेकिन मैं चाहूंगा जो आपने इतनी गहराई के अंदर बात की है, पहले सवाल का जवाब दिया उसको मैं आवाम के लिए थोड़ा समराइज करूं।
डेफिनेटली
ये है कि शेख साहब ने जो ये कोर्स का स्टार्ट किया सफा के नाम से या मिदरार इंस्टीट्यूट की बुनियाद जो रखी या उलूम शरिया आवाम के लिए जो है शेख साहब ने एक कंसाइज वर्जन के अंदर जो है वो पेश किया, उसका मकसद उलमा की रिप्रेजेंटेशन और इस उलूम शरिया की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एक बेहतर अंदाज में पेश करना था, ब्रिजिंग द गैप था, यानी जसर एक ब्रिज के मानन था कि वो उलमा को अवाम के साथ जोड़े, अवाम को उलमा के साथ जोड़े। और इसकी टारगेट मार्केट के अंदर अक्सर शेख वही लोग आए कि जिनका मस्जिदों से भी ताल्लुक नहीं था। हाँ। यानी अक्सर वही लोग इस कोर्स के अंदर आए कि इनका दूर दूर तक मसाजिद से ताल्लुक भी नहीं था। तो मैं चाहूंगा कि मैं एक जुमला जो शेख आतिफ हमसे आज से 10-12 साल पहले बोला करते थे, जिसने हमें बड़ी ताकत दी, हमें बड़ा प्लेयर दिया कि हम इस फील्ड के अंदर आगे बढ़े, और वो ये था कि बेटा हार्वर्ड का बच्चा जो है वो मदरसे नहीं किया और मदरसे का बच्चा जो है वो हार्वर्ड नहीं किया। मैं चाहूंगा कि शेख आतिफ से कि वो इस जुमले के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि आज जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और अपने जो है करियर्स के अंदर जो है एक्सेल कर रहे हैं उनको इस बात की अहमियत का अंदाजा हो कि ये गैप क्रिएट क्यों हुआ या इस गैप की नौइयत क्या है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है उसने कभी मदरसे की शक्ल नहीं देखी और किसी मदरसे के बच्चे ने जिसने दिन रात कुरान हदीस की तालीम के अंदर लगाया वो दुनिया से इतना पीछे रह गया कि उसके जो उसूल उसने जो अपनी शरीयत के पढ़े हैं उलूम शरिया के उसका इंतबाक करना आज के दौर के अंदर उसके लिए मुश्किल हो गया बिकॉज ही लैक्स एक्सपोजर। और उसमें ये गैप जो है इसने दोनों को ही नुकसान पहुंचाया, ऐसा नहीं कि खाली उलमा को हम बोलेंगे कि जी उनके इंतबाक के अंदर शरीयत के आज की एप्लीकेशन के अंदर उनको नुकसान हुआ, बल्कि ज्यादा नुकसान दुनियादार तबके का हुआ कि उसने एक अल्लाह ताला की वही और शरीयत का नूर था उसको ना अपना कर जो है बहुत कुछ जो है बहुत सी चीजों से डिप्राइव रहे वो अपनी जिंदगी के अंदर। तो मैं चाहूंगा शेख इस पर आप दोबारा मेरे ख्याल से जिस तरह आपने हमें मोटिवेट किया था उस जमाने के अंदर कि वो चिराग जो हमारे सीने के अंदर अल्लाह ताला ने आपके जरिए जलवाया कि हार्वर्ड का बच्चा जो है वो आप अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बोलते हैं कि हार्वर्ड का बच्चा जो है कभी मदरसे नहीं गया और मदरसे का बच्चा कभी हार्वर्ड नहीं गया।
देखिए असल में मसला ये था, एक चीज होती है मफहूम फहम जिसे हम कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज है उस कॉन्सेप्ट की रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं ताबीर, इबारत, कि उस मफहूम को आप पेश किस तरह कर रहे हैं। और तीसरी चीज है उस मफहूम की आपने तामीर क्या किया उस मफहूम से। एक चीज है तफहीम, दूसरी चीज है ताबीर, तीसरी चीज है तामीर। तीनों बाबे तफील के सीखे।
ठीक
है। मफहूम जो है ना, मफहूम वो जिंदगी में तजर्बात से भी मिलता है और मफहूम मुताले से भी मिलता है। जो मुताले में रहा और मुशाहिदा नहीं किया, इसका भी मफहूम कमजोर होगा, और जो जो तजर्बात करता रहा और मुताला नहीं करता रहा, तो इसके मफहूम में वक्त बहुत लग जाएगा, उनके ठोकरे बहुत होंगे। बहरहाल मफहूम लोग समझ जाते हैं, जिंदगी सिखा देती है, मगर वक्त पे नहीं आया ना तो ये नुकसान है। वक्त पे अगर फहम और इल्म नहीं आया ना, और बाद में जाके ठोकरे खा के वक्त जाया करके आना है, तो सिविलाइजेशनल वॉर्स के अंदर जो है आप फिर पीछे रह जाएंगे। अगर आपने भी मेरी उम्र पे आके वो सीखना जो मैंने अब सीखा है, तो फिर मेरे तजर्बात का क्या फायदा हुआ आपके लिए?
बिल्कुल।
तो आपके दो टारगेट्स होंगे, एक आपका टारगेट होगा मुझसे सीखना, और एक आपका टारगेट होगा जो फील्ड में और बड़े बैठे हैं उनसे सीखना, और एक आपका टारगेट होगा जिसका आपने खुद एक्सपेरिमेंट्स करके समझना है कि इनके वक्तों में क्या कहानी थी और हमसे पहलों के वक्तों में क्या कहानी थी। इसके बगैर आप जल्दी मफहूम नहीं समझ सकते जिंदगी का, अल्लाह का, कायनात का, डेवलपमेंट्स का, स्ट्रक्चरिंग का और जंगों का। तो इसके लिए, ये सारे के लिए आपको पढ़ना है, आपको इल्म हासिल करना है। दूसरा, बहुत से लोगों के पास इल्म होता है, फहम होती है, उन्हें तजर्बा होता है, उन्हें पता है ये इस तरह नहीं करना, ये इस तरह करना, मगर उनके पास वो लैंग्वेज, वो टूल ही नहीं होता जिससे अपना फहम अगले में उतारा जाता है, उसे इबारत कहते हैं। अल्लाह ने अपना अपनी अपनी जो अपना जो इल्म है ना, जो अपना फहम दिया है इंसान को, वो अरबी में दिया है।
सही।
आप अल्लाह से बगैर अरबी के बात कर सकते हैं, और अल्लाह ताला आपको बगैर अरबी के रिस्पॉन्ड भी कर देता है।
ठीक है।
और अगर आपकी गलती हो तो उस पर भी ताल्लुक चलता रहता है, अंता अब्दी व अना रब्बुक की गलती भी अगर हो जाए, जो वो ऊंटनी होने के बाद हो गया। पॉइंट ये है कि आप इबारत के थ्रू ज्यादा पावरफुली समझ सकते हो अल्लाह क्या चाहता है और क्या कह रहा है। तो दूसरी दो बात ये होगी कि ताबीर और इबारत की कमजोरी जो है ना आज की दुनिया की जो, और अब तीसरी चीज आती है इमारत और तामीर। तामीर तो सर आपके पास है ही नहीं,
अनफॉर्चुनेटली।
आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई कैपिटलिस्टिक ड्रिवन एटीट्यूड रखता हूं, या मैं जो हूं कोई वेस्टर्न ड्रिवन एटीट्यूड रखता हूं, मैं देसी आदमी हूं, पिंड देहातों का आदमी। पॉइंट ये है आज के दौर में अपने फहम पर जो इमारत खड़ी की है ना, वो मगरिब ने की है।
सही।
और वो इल्म जो उसका फहम है वो अंग्रेजी में है। तो अगर आप अपने माजी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उस इबारत को समझना बहुत जरूरी है जो अरबी में एग्जिस्ट करती है 1200 साल से, 1300 साल, 1400 साल। और अगर आपने जिद्दत को समझना है तो आप जिद्दत को समझ कैसे अंग्रेजी के बगैर खोल लेंगे? और अगर आपने जिद्दत को समझाना है तो आप इबारत के अरबी की इस्तेमाल करेंगे, हो भी सकता है बीच में ट्रांसलेटर होगा।
सही।
लेकिन जुमले की असल सट जिसे हम कहते हैं, जो असल मार है, वो तो वही होगा ना कि जिसमें वो समझता है उसको समझाया जाए।
इकबाल को उर्दू में समझा जाएगा और शेक्सपियर को इंग्लिश में समझाएगा, तो वही उसका कमाल है।
हाँ, आप शेक्सपियर अरबी में पढ़ाए और इकबाल इंग्लिश में पढ़ाए, तो वो इकबाल की कोई पोइट्री इंग्लिश में आप सुनने मजा ही नहीं आता। मतलब आप
जुमला गैर मुफीद,
खुदी मत बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, डोंट सेल योर सेल्फ, मेक योर नेम इन 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 द पॉवर्टी, मतलब वो जान ही नहीं है उसके अंदर।
सही। रूई नहीं आ रही,
रूई नहीं है। शेक्सपियर उर्दू में आके अगर बोल रहा हो मैं क्लियोपेट्रा, ओथेलो, मतलब कैसे अजीब सा लगेगा, क्लियोपेट्रा, मतलब साउंड सो वियर्ड। अगरचे आप बोल लेंगे, पॉइंट ये है आपने जिद्दत से मुकाबला करना है, इबारत उसकी अंग्रेजी, आपने तारीख पढ़नी है, आपने अल्लाह का कलाम समझना है, आपने माजी का अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखना है अरबी और कुछ फारसी और उर्दू। इन इबारतों के बगैर भी मफहूम समझा जा सकता है, लेकिन गोरे का या वेस्ट का मुकाबला अगर सिर्फ ईमान से करना है तो वहां पर भी अंतुम लालाउना इन कुंतुम मुमिनीन के, तो वहां पर ईमान भी समझने के लिए, चले उर्दू में ईमान समझाते कोई किसी को। पॉइंट ये, जिससे आपका मुकाबला है या जिनसे आप अपने आप को कॉन्फ्लिक्टरी तौर में, अव्वल तो भाई अगर उसने इल्म के ऊपर कुछ बनाया तो उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा।
बिल्कुल।
इल्मी दुनिया मुतासिब नहीं होती, سیاسی دنیا متاثر ہوتی ہے.
من جدہ وجدہ
علمی دنیا متاثر اور پریجڈسٹ نہیں ہوتی, سیاست اور پولیٹکس پریجڈسٹ ہوتی ہے. سیاست اپنوں کے بیچ کے اندر بھی تعصب کر دیتی ہے اور سیاست غیروں کے ساتھ بھی تعصب کرتی ہے, کیونکہ سیاست میں مفاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے پاور.
صحیح.
وہ سیاست جو بغیر تعصب کے علم کے سہارے پہ کی جاتی ہے نا, وہ پھر پوری تین دنیاوں پہ راج کرتی ہے. صحابہ کی جو سیاست تھی نا, اس نے پوری دنیا پہ راج کیا, کیونکہ وہاں تعصب بھی نہیں تھا اور علم بھی عروج پر تھا.
اللہ اکبر.
سمجھ رہے ہیں؟ آج کی سیاست کے اندر تعصب بھی ہے اور علم کی تو بالکل ہی کمی ہے. اب اس لیے یہ دونوں دنیا کو علمی بات ہو رہی ہے, سیاسی بات نہیں کر رہا.
ٹھیک.
سیاست میں آتی ہے ترکیب, تدبیر, ڈپلومیسی, اسٹریٹجیز, آرٹ آف وار, انٹرنیشنل پولیٹیکل ریلیشن شپس, انٹیریئر منسٹری, ایکسٹرنل فورن منسٹریز, ڈیفینس منسٹریز, نیریٹو بلڈنگ, ففتھ جنریشن وار, اکنامکس وغیرہ, یہ سیاست کے اندر جائے گا سارا.
صحیح.
پرائیورٹائزیشن, پریفرنسز, کس سے ہاتھ ملانا ہے کس سے, یہ سیاسی باتیں. جب علمی دنیا کے لوگ علمی دنیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں تعصب نہیں ہو سکتا, اور ان کی بھی علمی دنیا ایک لیول پر تعصب رکھتے ہوئے بھی تعصب دکھائے گی نہیں, کیونکہ وہ ہلکے ہو جائیں گے.
بالکل ایسے ہی.
تو اس کے لیے ضرورت اس جملے کی آئی کہ بھائی جس نے ان کی عبارت ہارورڈ میں جا کے سیکھی,
بالکل,
اور ان کا فہم ہارورڈ میں جا کے سیکھا, اور ان کی تعمیر ان کے ملک میں پڑی یا یہاں سے پڑی, وہ تو بلینڈ ہو گیا اس کے ساتھ, مگر اس عبارت میں اور اس فلسفے میں اور اس تعمیر میں کچھ ان کا اپنا بھی مال آیا ہوگا.
بالکل آتا.
اس میں غلاظت بھی آئی ہوگی. اور اسی مسئلے کے اندر جو ہے, ہمارے بہت بڑے مفکر رہے ہیں, بہت بڑے نام رہے ہیں, سر سید احمد خان جو ہیں, ان سے غلطیاں ہو گئیں بہت بڑی بڑی. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو میک ہم کانٹروورشل اوور ہیئر, ہی ہمسیلف میڈ ہم الاٹ کانٹروورشل, بیکاز وہ جب جدت پہ آدمی جاتا ہے
بڑی اس زمانے میں کنفرنٹیشن,
تو قدامت پسندی اور روایت جہاں نہیں ہوتی, ٹریڈیشنلزم اور کنزرویٹوز نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس جدت میں جاتے وقت, ماڈرنائزیشن میں جاتے وقت روکنے کے کوئی پرنسپلز نہیں ہوں گے, لاک نہیں ہوگا, غلطی ہوگی.
صحیح.
کیونکہ انہوں نے تو اب ہر قسم کا مسالہ ڈالا ہوا ہے نا اس میں.
بالکل ایسے.
اور وہ اکھڑ جائیں گے پیر. اور جو ساحل پہ بیٹھے ہوئے جدت کو ویلکم نہیں کر رہے ہوتے, تو نوکیا کا حال دیکھ لیں آپ. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک فون, اب اس پر کوئی کہے گا شیخ صاحب آپ نے فون بنانے والی آئیڈیالوجی کو جو ہے ریلیجیس آئیڈیالوجی بھی کر دی. میں نے کہا بھائی آئیڈیالوجی کا بھی ایک سیلز مین ہوتا ہے اور ایک بائر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
چاہے وہ آئیڈیالوجی موبائل کے ساتھ جڑی ہو یا وہ کسی اسپرچل ٹیکسٹ کے ساتھ جڑی ہو, آگے تو نفسیات ہی لے رہی ہے نا اس کو. تو نوکیا وینٹ آف دا ریکارڈ جسٹ بیکاز دے ور ناٹ ایوالوگ. تو اگر ساحل پر بیٹھ کے قوموں کو کنٹرول کرنا ہے تو یا تو کلٹ بننا پڑے گا, تعصب لانا پڑے گا اور لوگوں کو ڈرانا پڑے گا. اور قومیں رکتی ہیں
نہیں,
قوموں میں ڈر ہوتا ہے. قوموں میں ہمیشہ آپ کو ایک روگ ملے گا, روگ نیشن, جس کا کام ہی ہوتا ہے کہنا آؤ جی ساحل میں چھلانگ لگاؤ, زندگی ہمیشہ سمندروں کے پار ہے. تو آپ نے گراؤنڈ پر کیا تیاری کی؟ اپنے حدیث میں آتا ہے کہ تم سب آگ میں جا رہے ہو, لیڈرز نبیوں کا کام ہوتا ہے وہ گردوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا تھا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, نبیوں کی وراثت تو علماء کے پاس آئی ہے. تو ہمارے لیڈرشپ تو یہاں, اور ٹاپ مینجمنٹ از آلویز ٹو بی بلیمڈ.
یس.
فلا تلومونی ولومو
انفسکم.
آپ شیطان کہے گا مجھے مت کہو, تمہاری غلطیاں تھیں, تم نے کیا. تو آپ نے قوموں کے ساتھ اگر کنٹرول رکھنا ہے, اپنا کمانڈ رکھنا ہے, تو آپ اور اپنی علم کی دھاپ رکھنی, اور ان کے آپ نے فور بیررز بننا ہے, تو آپ کو ان کے ساتھ بھی ایوالو ہونا ہوگا. مین ویل ان کی ایولیوشن سے آپ کو تھوڑا سا رکھنا. تو جدت میں جاتے ہوئے آپ نے روایت کو بھی زندہ رکھنا ہے اور ٹف ٹائم دینا ہے اس ٹرانزیشن کو, کہ وہ اندھی ٹرانزیشن نہ ہو جائے, کہ لوگ فوراً مغرب کے پیچھے لگ جائیں. اور مین ویل آپ نے اپنے اندر بھی ریفارمز لانے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں منوانی بھی پڑتی ہیں. تو اس طرح لوگوں سے رشتہ بنتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی 70-60% بات اس کے ساتھ میرا مفاد جڑا ہوا ہے, میری زندگی کی خوشی جڑی ہوئی ہے, میری زندگی کا پہیا جلا ہوا ہے, تو میں 30% اس کا لے لوں گا. جیسے آپ میرا بھی 30% برداشت کر لیتے ہوں گے, میرے میں کتنی خامیاں ہوں گی. کچھ لوگوں نے تو بالکل ہی, مطلب ویسے تو کسی نے خیر نہ دیکھنا تو وہ کوئی خیر نہ, تو نہیں دیکھنا ہوگا تو ایبسولوٹ ایول آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور اگر خیر دیکھنا ہو تو کسی کا 10-15% بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہ کچھ تو ان سے بھی فائدہ ہو رہا ہے, تو چلو اس کا تھوڑا سا یہ بھی برداشت کر لیتے. اس لیے ہارورڈ کا گریجویٹ, مدرسہ مدرسے کا, جس نے دینیات کو اور اسلامک اس کو سمجھا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈرتے تھے وہاں جانے کے لیے. हालात ऐसे थे, 200 साल का डिस्टेंस ऐसा था, किसी ने ये काम करना था, घबराहट थी, दौरे फितन था, डर था, तासुब था, अपनी सरदारियां थी, चौधराहट थी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बट देर वॉज अ नीड फॉर समवन कि वो उसने वहां के। अब इवन कासिम अली शाह साहब की आप बात देखें, उन्होंने वेस्टर्न थिंकर्स की बातों को अगर उर्दू में पेश किया तो प्रॉब्लम क्या आप लोगों को?
बिल्कुल,
पॉइंट ये उसके साथ जो गलत चीज आ रही है उसे कंट्रोल करना शाह साहब का काम है,
ठीक है,
ही विल एक्चुअली कंट्रोल दैट। अगर मैं भी किसी वेस्टर्न थॉट फ्रेम को यहां पे उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा या बात करूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा भाई इसके साथ ये भी मसाइल है। कौन करेगा वो? आलिम,
इल्म,
इल्म
अगेन,
इल्म यमीज अल खबीस है, मेहनत तैयब करता है।
बिल्कुल,
तो इसलिए हार्वर्ड के ग्रेजुएट को मदरसे मदरसे ये गैप इसलिए बना क्योंकि लोग रुकते कहें, वो वहां चला गया, एक यहां चला गया, जब वो वहां गया तो वो इसको नहीं समझ सका और जब ये यहां पर है ये उसको नहीं समझ पा रहे या समझना चाहते नहीं है, या
बलकज़बू
बिमालम यही तो बेइल्मी, जब उन्होंने देखा कभी समझ ही नहीं आ रही, जब मैं आपसे इतना इंडिफरेंट हो गया तो खैर तो दूर की बात है आपके वजूद पर ही मैंने,
ठीक है,
तो इसलिए वो एब्सोल्यूट इविल है। वेस्ट इज एब्सोल्यूट इविल बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट, दैट इज माइंड, प्लस वो एक जालिम सिविलाइजेशन। मगर उन्होंने इंटेलेक्चुअल और एकेडेमिक्स और इंटेलेक्ट तो वहां के आपको ये कहेंगे ना सर हमने तो नहीं फौजें भेजी थी ना, हमसे तो आप बातचीत करें ना, तो इंटेलेक्चुअल्स पूरी दुनिया के पॉलिटिकल थोड़ी हो सकते हैं, और अगर वो पॉलिटिकल भी होंगे तो बहरहाल मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। इंटेलेक्ट ने इल्म को पूरी दुनिया में बगैर तासुब के सर्व करना होता है। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी रही है और है और हमेशा रहेगी, इस्लाम एक इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी भी है इस, और इस्लाम स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी भी है, तो पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल फिरके इस्लाम को खाते में रख के चल रहे होंगे, पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल फिरके इस्लाम को खाते में लेके चल रहे होंगे, और पूरी दुनिया के पॉलिटिकल भी इस्लाम को खाते। और बात है कि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की दाढ़ के नीचे हमेशा इसलिए आ गए क्योंकि पावर एक तंग करती है ना लोगों को, इसलिए उसने हमें
मुसलमानों के पास रही भी,
मुसलमान का एक नहीं हजार साल रही है,
बिल्कुल ऐसी।
और आपने जब अपना रूल किया तो आपने बहुत कुछ किया, आपकी तारीख, इसलिए इस्लाम में जो ग्लोरिफिकेशन भी मिल गई है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मिल गई।
सही,
तो जो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी जो सदियों कल को अगर कल को हमारे पास खिलाफ आज नहीं है, कल को खिलाफत हो ना हो, पावर हो ना हो, ये मामले हो ना हो, तो क्या जो इस्लाम का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है इतनी सदियों का जो नबियों से चलता आ रहा है जो हमारे और एक एंड के अंदर यही रह जाना है?
सही,
हुकूमतें तो रहेंगी नहीं,
बिल्कुल,
दुनिया में सबको, और क्यामत की बड़ी निशानियों में से यह कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स उठ जाएगा दुनिया से।
इनल्लाह यकबिदुल इल्म बिकब्दिल उलमा,
बिकब्दिल इंतजाउल इल्म बिइंतजाउल उलमा, सही मुस्लिम की हदीस है कि इंटेलेक्चुअल उठ जाएंगे इस्लाम के। तो इस्लाम के 50 फैसेट्स हैं जिसका एक, इसलिए हार्वर्ड का ग्रेजुएट अगर मदरसे नहीं किया और मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं किया तो इसके बीच में कल्चरल डेफिसिट या पुरानी गलतियां या दौरे फितन ये सारे मामलात को रख के आप इंटेलेक्ट को और अकल को और शऊर को रोक नहीं सकते मिलने से, हम उस पर चेक्स एंड बैलेंस लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस चीज की भी बहुत बड़ी नीड है कि अहले इल्म अहले दानिश अहले फिकर को साथ में बैठना पड़ेगा, और मफहूम जो है मफहूम उसके पास भी है, मफहूम आप ये कहें मफहूम सिर्फ मुसलमान के पास होता है तो फिर फितरत कहां जाएगी? कितने लोग होते हैं याद नहीं है, हम लोग एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वो डेनमार्क का पीएचडी था,
बिल्कुल
याद है, वो
फैसलाबाद
में कैसी बातें कर रहा था वो, सिर्फ उसके पास इबारत अरबी की नहीं थी।
आई वॉज लाइक के मैं ये सूरे बकरा आयत नंबर 36 लग रही है।
हाँ, तो कुछ लोग कितने
फितरतन पहुंच जाते हैं उस
मफहूम, तो मफहूम है ना,
मफहूम ताबीर जो है वो।
अच्छा, क्या हम इस सवाल को उठा सकते हैं कि सिर्फ मफहूम का फहम हो तो आलिम कहलाता है?
कुछ क्लास के लिए भी छोड़ दें,
ताबीर अरबी में होना लाजिम है या नहीं? मेरे ख्याल से ताबीर होनी चाहिए अरबी की,
ताबीर में है, बस
हुसन ताबीर में है, वसत ताबीर में है, बलागत ताबीर में है, और माना ताबीर के अंदर है अरबी की अंदर से जो उस मफहूम की एक्सट्रैक्शन है वो बगैर अरबी को सीखे बगैर नहीं हो सकती।
कुरान का जो मौजा है वो सिर्फ मफहूम तो नहीं, ताबीर है,
इबारत होता, बल्कि पहली तो चीज ही है यतलु अलैहिम आयाती, नबियों का पहला काम कुरान की, इसलिए अरबी की तिलावत, अरबी की जो उसका पढ़ना है और उसकी जो बरकत है, और ये इस लुगत के बारे में तो तुम्हारे के अकवाल हैं और प्लस ये जुबान है और ये मामलात हैं, ऑल इज गुड। तो बहरहाल आप ये नहीं कह सकते कि अरबी को आप उठा के साइड में करते, इनफैक्ट अरबिक इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, हमें भी जितनी आती है नहीं आती जो भी हो, बट इबारत तो सीखनी पड़ेगी आपको।
ठीक, अच्छा यहाँ पर मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि मैं जिनको जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मैं इनको फिर से बता दे चलूं, असफा के हवाले से हमारा वेबिनार है।
हाउ इज द रिस्पांस बाय द वे?
अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस इज गुड अप टू नाउ।
सबको मेरा सलाम प्यार भेज दें आप।
हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस सेशन में सारे सवालों के जवाब दे सकूंगा, लेकिन सबको बता दे चलूं इंशाल्लाह आपके सवाल जो है वो इंशाल्लाह नोट हो रहे हैं। और अभी आपके लिए खुशखबरी और भी है, शेख आतिफ का ये लास्ट वेबिनार नहीं है इंशाल्लाह, हमने कुछ और बुकिंग्स भी की है शेख साहब के साथ, तो आपके सारे सवालों का इंशाल्लाह जवाब मैं दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। शेख मुझे आप यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, बोले इंशाल्लाह
इंशाल्लाह इंशाल्लाह
जान आई है थोड़ी सी। इससे पीछे अगर मैं चलूं, अभी शेख साहब ने जवाब दिया इसका, हार्वर्ड का बच्चा मदरसे नहीं गया और मदरसे का बच्चा हार्वर्ड नहीं किया, शेख वल्लाही मुझे क्लासरूम याद आ गया पुराना, 10 साल पीछे आप ले गए और मैं समझता हूँ कि मैं 10 साल और पीछे चला गया
हूँ
और इंशाल्लाह जो है प्लेयर के साथ मजीद जो है मैं भी सपोर्ट करूंगा।
आई विश यू द बेस्ट ऑफ थिंग। आई थिंक यू आर सिटिंग ऑन दिस बेंच एंड यू आर माशाल्लाह से लीडिंग द शो बिकॉज ऑफ इल्म। इल्म लीडरशिप की बेस है, क़यादत की बेस इल्म है।
अच्छा जी, यहाँ पर शेख एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है,
एक आलिम ही लीड करेगा मेरी नजर के अंदर। फिर उनको बोले उन लोगों को मैसेज करें जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ अभी, प्लीज ब्रिंग द फैमिली, देयर इज एन इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन और गोइंग ऑन, ब्रिंग देम इन।
सो आई हैव रेड सम क्वेश्चंस, उसके अंदर अक्सर जो प्रैक्टिकल आवाम यहाँ पे जो बैठी है, जो कि बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फैसेट से जो है लोग काम जो है ना वो पढ़ रहे हैं सफा के अंदर, तो उनके सवाल जो है वो ये है कि सही है उलूम शरिया नो डाउट आउट क्लास इल्म है, कुरान हदीस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इससे अफजल इल्म कोई नहीं
है, सही है,
मतलब क्वेश्चन इज फजीलत है क्या जिंदगी में मेरे काम आएगी नहीं आएगी, यानी मेरे बिजनेस के।
आप मुझे चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल जवाब दूं या मैं इंटेलेक्चुअल जवाब दूं?
शेख वो जवाब दें कि आ जाए
आप पहले आवाम से इस बात का पूछें कि आप इल्म हासिल करने का इंसान को क्या फायदा होगा, जो मैं इतनी मार खाऊंगा यहां पर, इतने मुश्किल जार्गन्स में जाऊंगा, इतना हिसाब किताब होगा।
सॉरी टू कट यू,
दे शुड आंसर माई क्वेश्चन। आपको सियासी जवाब चाहिए या आपको स्पिरिचुअल जवाब चाहिए?
हाँ जी, सियासी जवाब चाहिए या स्पिरिचुअल जवाब चाहिए?
सियासत का मतलब गलत नहीं है, सियासत से मुराद ये जो आप रोजमर्रा की जिंदगी सियासत ही है, और स्पिरिचुअल जो है वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कि आपने अपने पर्सनल सेल्फ को क्या फायदा करना है, तो एक्सटर्नल फायदा जो होता है वो सियासत बन जाती है और इंटरनल फायदा जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी बन जाती है। आपको किस किस्म का जवाब चाहिए इसका?
शेख वो तो है, लेकिन यहाँ पर जिस तालीफ की तरफ मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर लोग जो पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है उसका एक फाइनेंशियल स्कोप सामने है, वो बंदा बिजनेस कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, उसको पता है मार्केट के अंदर इतने जो है इतने फिगर की सैलरी जो है ऑलरेडी मौजूद है, यानी कहीं पे फाइनेंशियल करियर है, पॉलिटिक्स के अंदर पावर है, कहीं पे जो है आपके पास शोहरत है, फेम है, ये उलूम इस्लामिया ये शरी इल्म हासिल करके आप मतलब कुछ तो आप बंदे से प्लेज करें ना कि इतने साल पढ़ने के बाद ये 2 साल तुम जिंदगी के लगाओगे, हालांकि तुम एग्जीक्यूटिव आवर्स लगा रहे हो सफा के अंदर, आप सुबह 8 बजे नहीं आ रहे और 1 बजे नहीं जा रहे, आप अपनी जॉब भी पूरी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, फैमिली को भी देखेंगे, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को 2 घंटे आपने देना है इंशाल्लाह, बाकी काम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उस असाज़ा जो है वो आप पे काम करेंगे, आपने सिर्फ 2 घंटे देने, लेकिन उसके बावजूद एक बंदा अगर इतना टाइम दे रहा है जो कि टाइम प्रेशियस है बहुत, वो टाइम कहीं और भी लगा सकता है और पार्ट टाइम कोई और जॉब कर सकता है, कोई और डिग्री कर सकता है, कोई और स्किल सीख सकता है, बड़ी आजकल स्किल्स आ गई हैं और बड़ा पैसा लोग कमा रहे हैं, तो आप क्या प्लेज कर रहे हैं लोगों से, क्या उनको फायदा होगा उलूम शरिया पढ़ के?
देखें एक तो जवाब ये है जो होना चाहिए, सबसे पहला जवाब ये है कि जन्नत मिलेगी, लेकिन लोगों को चाहिए ना ग्राउंड रियालिटीज के ऊपर। हमारे यहां एक पार्टी सिर्फ जन्नत दिखा रही है, उनका ग्राउंड रियालिटी से कोई लेना देना नहीं है, वही कंटेंट जो इतने सालों से चलता आ रहा है उसी कंटेंट को वो लेके चल रहे हैं, और जन्नत सबके फमन जोहजियाने नारी वाउत के लिए जन्नत फकत फाज, जो जन्नत से दाखिल हो गया आग से बच गया वो कामयाब है, ठीक है, तो इस इल्म के थ्रू आप जन्नत में चले जाएंगे ये। लेकिन अब जो पाकिस्तान आ रहा है सामने, वो अब हर चीज को मुख्तलिफ डोमेन से जानना चाहता है कि क्या इसकी मेरी रियल लाइफ इश्यूज के अंदर कोई एप्लीकेशन है, क्या इसके मेरे रियल टाइम चैलेंजेस से कोई ताल्लुकात है, क्या इसके मेरी लीडरशिप से कोई ताल्लुकात है, मेरी पेरेंटिंग से कोई ताल्लुकात है, मेरी सल्तनत चलाने से कोई ताल्लुकात है, चाहे मेरी दो इंट की क्यों ना हो। तो इसके अंदर हम आपसे कहते हैं कि बहुत से लोग कहते तो हैं इस चीज के बारे में कि नहीं जी हम भी ग्राउंड वर्क्स को मानते हैं, हम भी ग्राउंड रियलिटीज को मानते हैं, हम भी ग्राउंड स्ट्रेटजीज को मानते हैं। तो भाई हम इसको यही कहते हैं ना कि भाई आप दोनों में बैलेंस रखें, आखिरत भी मिलेगी इसी इल्म से मिलेगी, अल्लाह की मार्फत होगी इसी इल्म से मिलेगी, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम होगा इसी इल्म से कायम होगा, मजीद ज्यादा वसवसों से लड़ाई होगी इसी इल्म, जितना बढ़ेगा वसवसे उतने ज्यादा आएंगे, इल्म जितना बढ़ेगा वसवसे उतने ज्यादा जान तोड़ देंगे, दोनों चीजें, इल्म जितना आएगा यकीन उतना बढ़ेगा, इल्म जितना आएगा उतनी ज्यादा आप में खौफ और उम्मीद की बैलेंसिंग आएगी, इल्म जितना आएगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आर वी ऑल क्लियर? अच्छा, इल्म जितना आएगा उसके बाद आप में कन्विक्शन आएगी, इल्म जितना आएगा उसमें आपकी जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगी, सेल्फ मॉडल, ये तो हो गई स्पिरिचुअल बात है। अब आप बताएं, तुम्हें आप इजाजत दें तो मैं सियासी बातें करूं?
बिल्कुल, जो रियल है सियासी भी बताएं, दोनों बताएं, स्पिरिचुअल वाले कम है, सियासी वाले ज्यादा है।
पहली बात ये, जब आप टेबल पे, अब मैं बात करूंगा वो जो 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 ब्रांड मेरा ज्यादा चलता है ना, मतलब लोग कहते हैं जी स्ट्रेटजिस्ट आप बताएं, प्लानिंग के लिहाज से बताएं, डेवलपमेंट के लिहाज से, रिफॉर्म्स के लिहाज से, जिंदगी में कोई भी चीज आपने बेचनी होती है ना किसी को, जिंदगी में चाहे वो आइडिया सेल करना हो या अपना भरम सेल करना हो, या आपने अपना माल बेचना हो, आपने फिजियोलॉजिकल माल बेचना हो या आपने एब्स्ट्रैक्ट माल बेचना हो, आपने जिंदगी के अंदर कोई भी चीज सेल करनी होती है ना, तो अगले को सेल करने के लिए टेबल पर, चाहे पावर सेल करनी है, टैका सेल करना है, धमकी लगानी है किसी को, समझाना है किसी को, बिठाना है किसी को, मिलाना है किसी को या चढ़ाना है किसी को, ये सारे काम करने के लिए ना पूरी पर्सनैलिटी सेल हो रही होती है।
सही,
उसमें आपका पूरा मफहूम, आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपका सारा मुशाहिदा, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ मासेस एंड द पर्सन। तो पहली बात ये है, शेख आतिफ की तरक्की और कबूलियत का सबसे बड़ा राज ये था कि जो बातें मैं नॉर्मली अपनी मोटिवेशन में लोगों के लिए करता भी था, उसमें तड़का ही कुरान हदीस की वजह से लगा।
अल्लाह अकबर।
क्योंकि एक तो कंटेंट यहां से आया, फॉर एग्जांपल हमने जब लास्ट टाइम बात की कि भाई रिक्रूटमेंट अगर किसी ने करनी, किसी को मुलाजमत पे रखना, मैं बैठा हुआ एक जगह के ऊपर, बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ वहां पर, और ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी, कितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, उसका एक बहुत बड़ा आदमी था। तो मैंने उनको बोला, सर मैं अगर रिक्रूटमेंट के ऊपर अगर कोई इस्लाम का कुरान हदीस से कुछ पेश करूं तो आप क्या कहेंगे? तो आगे वहां बहस छिड़ गई कि जी गोरे ने ऐसा कौन सा काम किया जो आप लोग लेके आ जाएंगे, कौन सा ऐसा काम छोड़ा है जो आप लेके आ जाएंगे, बॉस्टन से 150 PhD आ जाती है आपके पूरे मुल्क में, इतनी नहीं होंगी। मैंने कहा सर ठीक है ना, अब यो आप कम से कम वाइल्ड कार्ड पे इस रेस के अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में तो हमें शामिल कर लें, तामीर ना भी हुई तो क्या हुआ, चले इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट ही मुसलमानों के लिए जीत ले आदमी। वो बहरहाल बहस चलती रही, बहरहाल वो मानस पे ठीक है आप बताएं आपके पास क्या है। मैंने कहा अगर मैं बताऊंगा तो ऐसे अगर दे दूंगा तो फायदे नहीं है, कुछ उसके पर्क्स इंसेंटिव्स भी तो देना बताएं। बहरहाल वो बहुत हुआ, आगे कितने मौके मुझे उससे मिले नहीं मिले। टेबल के ऊपर एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की कॉर्पोरेट का बड़ा आदमी बैठा हो, दूसरी जगह पाकिस्तान का एक नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हो, वहां पर मैंने आयत कोट की, इन्ना खैर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान इन्ना खैर मन इस्ताजरता अल कबीउल अमीन। याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब उजरत पे रखने की बात की, और सर्विस इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन वहीं से हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उजरत पे और सर्विस पे सबसे अच्छा उस शख्स को रखा जा सकता है जिसमें अलकुवा वल अमान। अब इसकी अलकुवा और इमाना के चार पैराडॉक्सेस निकल सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। कुव्वत कितनी होनी चाहिए, फिजिकल कितनी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कितनी होनी चाहिए, अमानत और ऑनेस्टी कितनी होनी चाहिए, किसी महल में कुव्वत ज्यादा होती है अमानत कम हो जाए मसला नहीं है, कहीं अमीन हो जाए मगर कुव्वा ना हो तो भी मसला नहीं है, हम इसमें नहीं जाते। पॉइंट ये है कि टेबल पे आर्ग्यूमेंट में स्ट्रेंथ डालनी हो कुरान और हदीस के अंदर, पॉलिटिकल बात है अब ये, قرآن اور حدیث سے جو بات آئے گی نا وہ بہت اسٹرینتھن ہوتی ہے. اب قرآن کی وہ آیت بھی ہے نا
اقوام
جو قرآن سے جب آپ کی ریشنالٹی آ رہی ہوگی نا اقوام وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی اقوام ہوگی وہاں پہ اسم تبدیل کا سیگا لگا رہا وہ اگلے کو کھڑے نہیں ہونے دیتی.
صحیح ہے
کیونکہ آپ قرآن پیش کر رہے ہو اور لوگ قرآن کو مانتے ہیں لوگ حدیث کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن کو تو لوگ ایسے مانتے ہیں. تو پوائنٹ یہ آرگیومنٹ جیتنا ہو, حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے جس نے علم سیکھا علماء کو گرانے کے لیے جدال کرنے کے لیے آرگیومنٹیشن جیتنے کے لیے تو اس کا علم فساد کا ہی ہے. پوائنٹ یہ ہے بات سیاسی ہے, اف یو وانٹ ٹو بی یونیک ان دا مارکیٹ تو یہ گوروں کا منجن یہ ویسٹرن منجن تو سب بیچ رہے ہیں. لیٹس برنگ آر یونیک سیلنگ پوائنٹ, بلینڈ آف این عربک شریعہ اسلامک شریعہ تو بلینڈ فرام دا, آپ نے سائیکالوجی پہ بات کرنی ہے آپ لائیں گے دنیا میں آپ کو بڑے مل جائیں گے. ہم ابن قیم رحمۃ اللہ کو لے کے آتے ہیں, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو لے کے آتے ہیں, آپ امام غزالی کو بھی کھول لیں, دیز وار دا جائنٹس. اب اس کے اندر جب وہ بات کا تڑکا ہمارے اینڈ سے آتا ہے تو ایک روایت بھی دکھتی ہے, کنزرویٹزم بھی دکھتا ہے, ٹریڈیشنلزم بھی دکھتا ہے اور ماڈرنزم بھی دکھتا ہے. تو بلینڈ جو ہے اینڈ کے اندر سب سے کلاس کی مارکیٹ, نہ کنزرویٹوز بنیں گے نہ لبرلز بنیں گے, یہ بلینڈ بن جائے گا کیونکہ اٹس اے بلینڈ آف بوتھ دی ٹریڈیشنل بوتھ دی ٹریڈیشنز. تو اگر آپ نے یونیک ہمارے پروڈکٹ کی یونیکنیس کیسے کریٹ ہوئی, اگر ہم ٹوٹل سٹیون کوی لے آتے پورا رابن شرما لے آتے پورا ٹونی رابنز لے آتے تو بھی لوگ کہتے بھائی اس سے سیکھنے میں زیادہ مزہ ہے, اس کی بات تیرے منہ سے کیسے اچھی لگے گی.
صحیح ہے.
اور اگر ہم ٹوٹل یہاں سے اپنے والے لے آتے تو کیونکہ وہ بات نہیں ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ویسٹرن منجن بھی ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اپنا کانسیپٹ لاتے ہیں اور اس کے اوپر پیکیجنگ تھوڑی سی ان کی بھی ہو جاتی ہے مگر شاہد کے اندر ان کی دلیل ہو مگر اصل ہماری دلیل ہو تو لوگ مووڈ ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ہے. تو ٹو ون لائف اینڈ ٹو ون این اپرچونٹی آن دا ٹیبل علوم شریعہ ہیلپس یو دا موسٹ ان کریٹنگ دیٹ یونیک سیلنگ پوائنٹ. آپ نے اپنی کمپنیز میں ٹریننگز کرانی ہے,
بالکل
باہر کے لوگوں کی تو کتابیں مطلب سیون ہیبٹس وغیرہ تو سب ہم دیتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے,
سیون ہیبٹس فرام پروفیٹ صلی اللہ
علیہ وسلم, 20 ہیبٹس فرام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک میری ڈسکوری ہے. کتاب بھی میں نے اپنی تقریباً آپ شاید میری کتاب میں آپ شائع نہیں کرتے اس پر آپ بھی قوم کو جواب دیں ذرا. ڈونٹ ڈو دیٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ گراؤنڈ کے اوپر آپ نے کیسے اتنا بڑا انقلاب کھڑا کر دیا اور مائیکل ہارٹ نے آپ کو نمبر ون لیڈر کیوں کہا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. ہی ہمسیلف از اے کرسچن, واز اٹ ٹوٹل سپر نیچرل اور واز اٹ سم تھنگ نیچرل آن اٹ, اینڈ واٹ وار دوز نیچرل ٹریٹس. ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کی لائف ڈیکوڈ کر کے دکھا رہے ہیں. یہ ہمارا پولیٹیکل انسینٹو بھی اور یہ ہمارا ریلیجیس انسینٹو بھی ہے. اگر آپ نے لیڈرشپ کی بات کرنی ہے تو بھائی جان باہر والے مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ٹاپ نوچ لیڈر ہیں. آپ پروفیٹ مانے نہ مانے چلے آپ ان کی لیڈرشپ کے فیسٹ سے ہی فائدہ اٹھا لیں,
دنیا نے فائدہ اٹھایا
اور ہم اسے ایک لحاظ سے ڈومین تو کلیم ہوگی نا آپ کی. تو مسلمانوں کا پہلے ایک کام ہوتا تھا, آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ہر قسم کا باب ہے, کھانے پینے کا, ایتھکس کا, ایٹیکیٹس کا,
صحیح
حدود کا. حدود کو اگر ہم اچھے ورڈز میں ان کی دنیا کے اندر بولیں, ویسے حدود خود سب سے اچھا ورڈ ہے, دا جوڈیشری آف اے سسٹم, اسلامک جوڈیشری ورڈ وہ دے نا جو خوش کر دیتا ہے نا اگلوں کو.
صحیح.
حدود چپتا بہت ہے نا ان کو. دا اسلامک جوڈیشری, دا آرٹیکل آف دا لا میکنگ, دا ڈیوائن لا, اسلامک پینل لا, دا ڈیوائن پینل لا, دا ڈیوائن لاجک. ہے تمہاری تو لاجک ہے نا, ہماری تو ڈیوائن لاجک. اب وہ خود سوچیں گے یہ کیسے جارگنز آ رہے ہیں. صحیح. اچھا پھر آپ سوچ لیں ایتھکس آ رہا ہے, ایٹیکیٹس آ رہا ہے, پھر میرج, سوشل ایشوز, ایجوکیشنل ایشو, ایون تعلیم کیسے سکھائی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گدھے کے اوپر, کنتو ردیفن علی حمار, میں گدھے پہ بیٹھا ہوں کے پیچھے بیٹھا ہوں, وہاں پر ایجوکیشنل ڈسکورس لیا ہوا ہے آپ نے,
ٹیچنگ سکلز
ورک شاپ کراتے ہیں نا اس کے اوپر.
اتہار کی ساری ورک شاپ آ رہی ہیں. میں بتاتے چلوں جن کا بھی یہ سوال ہے, جن لوگوں کا بھی یہ سوال ہے کہ صفا ہمیں جو ہے ہمارے کریئرز ہماری لائف کے اندر کس طرح ہیلپ آؤٹ کرے گا پریکٹیکلی, یہ کوئی استعمال بھی ہوگا یا ایسی بس ٹائم جائے اور ایک ڈگری کا ایک پرچہ ہے, یہ تو آپ کو پہلے سیمسٹر کے بعد ہی پتہ چلے گا. جس کو جواب سمجھ آ گیا اس کو جواب سمجھ آ گیا, نہیں آیا تو اس کو میں جواب بتا دوں کہ پہلا سیمسٹر اگر کر لیں تو اگلے تین سیمسٹر کی ڈرائیو خود ہی آ جائے گی انشاءاللہ. میں ویبینار ہی نہیں کروں گا. یہ سارے ویبینارز ہوتے ہیں صرف فرسٹ سیمسٹر والوں کے لیے, बाकी तो वो कहते हैं उसामा कब शुरू हो रहा है सेमेस्टर, कब शुरू हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अगर आप बात करें जो शेख साहब ने सियासी जवाब के नाम से उसको जो है एक बिल्कुल उसकी कवरिंग की है, उसको जो है वो कोडिंग की है, वो सियासी जवाब वो पॉलिटिकल जवाब आपका पॉलिटिक्स सियासत वाला नहीं है, बल्कि वो ये है कि वो आपको एप्लीकेशन के लिहाज से दुनिया के अंदर जन्नत तो आपको इंशाल्लाह मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप नबियों के वारिस बनने जाएंगे इंशाल्लाह, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, कि आपको अल्लाह ताला का डर खशियत इबादत में लज्जत वो सारा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो तो आपको इंशाल्लाह नसीब ही नसीब होगा, इल्म वाले को अल्लाह ताला वो देता ही है। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आपका कोई भी रोल है लाइफ का, आप किसी भी रोल के अंदर, आप अगर आप पेरेंट हैं तो आपको पेरेंटहुड के अंदर बच्चों की तरबियत के अंदर आपको उसके अंदर जो है इंशाल्लाह रहनुमाई जरूर मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन के तरीके से किस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ा सकते हैं, डेलीगेशन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, आप सब डेलीगेट किस तरह करते थे, ट्रेनिंग के लिहाज से, लीडरशिप के लिहाज से, इसी तरह जो है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिहाज से, ये सारी चीजें इंशाल्लाह सफा के अंदर आपको इसके टूल जरूर दिखाई देंगे, आपको हल्की हल्की झलक जरूर दिखेगी कि यार मैं इससे ये भी निकाल सकता हूँ। असल में इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग हमारे पास जो है वो सफा पढ़ने के लिए आते हैं कि हर कोई अपने अपने नसीब का जो है ना वो ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, कि अपना जो है दुनिया में नसीब है तुम्हारा जो हिस्सा है वो मत भूल जाना। तो हम यही बोलते हैं कि जब क्लास के अंदर बैठो तो ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, शेख बात कर रहे हैं तो अपने अपने जो है वो हीरे अगर जवाहरात आपको नजर आ रहे हैं अपनी अपनी फील्ड के, इकट्ठे करते चले जाएं। आप डॉक्टर हैं, आपको आपकी फील्ड के अंदर जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ,
जरूर
कुरान हदीस देगा आपको, वो उसूल देगा, वो बेसिस देगा, वो फाउंडेशंस देगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी आपका आपका जितना भी विजनरी जो आपका काम है जो आपके लाइफ से ताल्लुक रखता है, जिसको आप ज्यादा परसेंटेज देते हैं अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, उसमें इंशाल्लाह एक कोर्स जरूर हेल्प करेगा। लेकिन बातें तो आप सुनते ही हैं, असल आप इसको तभी इसकी मेराज तक पहुंच सकते हैं अगर आप जो है वो इसके अंदर आएंगे।
नहीं, इसमें माय सेकंड टेक ऑन दिस इज भाई इख्तलाफ है,
सही
बात करते ना, घबराना किस बात, इख्तलाफ है, मसलक हैं, फिरके हैं, हैवी स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंस है पॉइंट यहां पर। और एक कौम क्या कह रही है, इख्तलाफ को छोड़ के यूनिफिकेशन हम बना लेते हैं किसी और बेसिस, तो कोई ह्यूमैनिटी की बेसिस पे इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई हुब्बे रसूल पे इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई खत्मे नबूवत पे इकट्ठा होना चाह रहा है, फाइन, दीज आर डिफरेंट एवेन्यूज फॉर द मुस्लिम पीपल टू गेट यूनिफाइड इन ऑन वन पर्सपेक्टिव। इस कोर्स के थ्रू कम से कम हम इनको करीब आने का एक मौका तो दे सकते हैं,
ठीक है,
हम डिफरेंस पढ़ाने की तमीज तो सिखा सकते हैं,
सही,
डिफरेंस स्टडी करने की तमीज तो सिखा सकते हैं। क्या बड़े बड़े उलमा और इमामों का आपस के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इसलिए बनाया गया था कि हम लड़ना शुरू करते हैं आपस में, जब उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की, इतने डिफरेंस, और आज भी हमने देखे हैं कितने कितने बड़े उलमा है, दे हैव सच स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस विद ईच अदर, बट देख, मैंने आपसे कहा ना, इंटेलेक्ट मुतासिब कैसे हो सकता है,
जितना फल आता है दरख्त के ऊपर होता
है। और ये भी एक बात है कि एक चीज सिर्फ एक दूसरे मौकफ का एराडिकेशन नहीं होती, एक चीज को देखने के मुख्तलिफ एंगल्स भी होते हैं, जैसे हम इख्तलाफ तनवो भी कहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि जी बनी कुरैज़ा पे जाके असर की नमाज पढ़ लें, और वो कह रहे हैं जी अब क्योंकि हुक्म वजूद में आ गया तो यही होगी, दिस इज द आई एम नॉट सेइंग कि इख्तलाफ जो है वो एक लिहाज से होना चाहिए, क्योंकि ला यज़ालूना मुख्तलिफीन इल्ला मा रहमा रब्बी,
सही,
इख्तलाफ अच्छा नहीं पसंद किया गया, बल्कि अल्लाह ने कहा उस पर रहम है जो इख्तलाफ नहीं करे, मगर एक चीज को देखने का जो डिफरेंट डिस्कोर्स है या फैसेट है, ये चीज हुसन पैदा करती है मफहूम में और इंटेलेक्ट। दूसरी बात यह है, आपको एक लेवल पर सिलेक्ट करने में, सॉल्व करने में, समझने में, मसलक फिरकों में भी क्लैरिटी मिलेगी, जब आप एक प्रॉपर बेस लेके चल रहे होते हैं आप में घबराहट नहीं होगी, आप पढ़ सकते हैं अगले को, डर क्या है अभी तो। अगर आप किसी के पास जाएंगे आज, और ऑब्वियसली आज, और ऐसा नहीं हम ये कब कह रहे हैं कि हर जगह ऐसे नहीं होंगे जो कह रहे होंगे भी हम ठीक हैं बाकी सब गलत, दिस इज एवरीवेयर, और हमारे यहाँ तो क्लास भी है, सर्टेनिटी से आगे बंदा रिजेक्ट करता है,
बिल्कुल
जी अगला है ही गलत, इसको
जन्नत के दरवाजे पे खड़े
नहीं चले, देखें इस तरह तो जो भी होगा, लेकिन पॉइंट ये है जो सबकी جو سب کی خوبصورتی ہے اسے بھی پڑھنا چاہیے, اور جو سب کے اندر اختلاف کا تنوع ہے اس کو بھی دیکھنے کی ایک تمیز ہونی چاہیے, اور جو واقع بدصورتیاں بھی رہیں پاسٹ کے اندر جس کے تحت یہ کلٹ بن چکے ہیں, اتنا لیول کا تفرقہ کھڑا ہوا ہوا ہے کہ آپ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میٹھا میٹھا پڑھائیں گے ہم, صرف اس میں سخت بات بھی ہوگی, اس کے اندر وہ باتیں ہوں گی جو خطرناک ہیں, جو مشکل, لیکن اس کو ہینڈل اگر ہم کامیاب ہو گئے سنبھالنے میں تو یہ سمجھ جائیں گے نا آگے بات کیسے دینی ہے. تو کہتے ہیں سخت سے سخت بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے,
اختلاف کہاں نہیں ہوتا. میں نے اکنامکس پڑھی, اس کے اندر کینیزین مانیٹرز کا اختلاف تھا,
ہاں,
اور علوم پڑھے اس کے اندر اکاؤنٹس کے اندر سٹینڈرڈز کا اختلاف تھا, ایک کمپنی دوسرے سٹینڈرڈز کو فالو کر رہی ہے اکاؤنٹنگ کے اندر, دوسری کمپنی دوسروں کو فالو کر رہی ہے, اختلاف کہاں نہیں ہے. میٹرک سسٹم ایک الگ چیز فالو
نہیں, آپ کے آپ کے یہاں ایک فکر ہے ڈگری کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اٹھا کے پھینک دو پورے ملک میں ایک یہ دھڑا بنا,
اور تعبیر پھر آ جائے گا نا,
میں وہ پھر لاؤں. ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے بھائی ڈگری کوئی چیز ہی نہیں ہے, دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس تھی نہیں, تو جو کامیابی کا راز ہے وہ صرف یہ اٹھو اور چڑھ جاؤ اور نکل جاؤ. اچھا ایک پارٹی ہے وہ عبارت کو اتنا اسٹرینتھن کرنے میں لگی ہے, وہ کہہ رہی ڈگری صرف اور صرف عبارت کو حل کرنے کا نام ہے, عبارت کی تحسین کا نام ہے, عبارت کی تجمیل کا نام ہے, عبارت کی تکمیل کا نام ہے. جو فریزولوجی ہے وہ اتنی کلاس کی ہونی چاہیے, اندر چاہے اس میں وزن ہو, تجربہ نہ ہو, مطالعہ ہو نہ ہو, اس کے اندر تعمیر ہو نہ ہو, کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ ہو نہ ہو, اس نے آگے جا کے مقابلے کیا ہو نہ ہو, اس نے جنگیں لڑی ہو نہ, بس عبارت بڑی خوبصورت ہے. افراد تفرید
بالکل,
ون از اونلی اسٹرینتھنگ دا لنگوسٹک پارٹ آف دا نالج اینڈ دا ادر از اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا پریکٹیکل پارٹ آف دا نالج, حالانکہ اٹس لینگویج, پریکٹیکلٹی, ڈیلیورنس اینڈ دا انٹائر پیکج. تو میری نظر کے اندر بھائی آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ لینا ہے, اور کہیں نہ کہیں سے برا سٹارٹ بھی لینا پڑتا ہے اچھے سٹارٹ کے لیے. دے آر سو مینی بیڈ اینڈنگز, گڈ اینڈنگز دیٹ ہیڈ اے بیڈ بگننگز. تو ایون کوئی نیگیٹو کونوٹیشن ہمارے بارے میں بھی دے رہا ہوگا, بھائی ان سے بات نہ کریں, ان سے پڑھے نہیں, یہ فلان ہے, یہ ڈمکان ہے, یہ اپنی طرف سے کوئی لے کے آ گئے ہیں, یہ ایم ای کیو نہیں ہے, یہ عالم بھی نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہے, یہ مارکیٹ کا نیریٹو ہر چیز کے بارے میں رہا ہے. تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں, ان بھائیوں کو بھی کیش کرنے کے لیے, ان کو بھی اپنی طرف لانے کے لیے, کہ بھائی سم بیڈ بگننگز ہیو اے گڈ اینڈنگ. Even that has to be an incentive for you to start with us.
Al-Ibratu bin Nihaya.
Al-Ibratu bin Nihaya. کہ کتنی ہی امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے شاید میرے خیال سے. It's always about انما الاعمال بالخواتیم. اور what you end on. تو فلیور کو چکھنا تو سرٹنٹی کے بعد بھی ہے, سرٹنٹی سے پہلے بھی ہے. سرٹنٹی سے پہلے فلیور کو غلط فلیور چکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا,
تعصب کریٹ کر دے گا نا وہ.
ہاں تو اس میں ایک رسک ہو سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ بھی ایک ہڈن ایجنڈا کے تھرو یہاں پہ لوگوں کو گھیر کے اپنا کر رہے ہیں.
بڑا ہڈن ایجنڈا.
تو پوائنٹ یہاں پر یہ, اس کے لیے آپ کا چاہیے جو لوگ آپ اسٹوڈنٹ ریویوز جو ہیں,
بالکل اسٹوڈنٹ ریویوز ہمارے پاس جو ہے,
جو لوگ صفا کے اندر ابھی میرے خیال سے, میں جسٹ وانٹ ٹو آسک آل دا اسٹوڈنٹس دیٹ ہیو سٹڈیڈ فرام دا انٹائر کور, آپ لوگ اپنے ریویوز دیں لوگوں کو بھیا, کہ کیا ہم کوئی اسپیسیفکلی کوئی چیز پھیلا رہے ہیں یا ہم واقعی ہی اس انٹلیکچوئل ڈیپتھ میں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ الحاد سے مقابلہ چل رہا ہے, جہاں پہ کفر شرک کی ڈیفینیشنز کے اندر کنفیوژنز ہو رہی ہیں, جہاں پر فقہ کیا ہوتی ہے, جہاں پہ ان ڈیپتھ جورسپروڈنس کیا ہوتی ہے, کیا اسلام صرف چار پانچ چیزوں کا ہی نام تھا. پلیز گیو یور ریویوز ٹو دا پیپل کہ ہاؤ وی ہیو پرفارمڈ.
الحمدللہ جی, ہمارے پچھلے سیمسٹر کے اندر بھی تقریباً 500 سے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رہے ہیں جو کہ انرولڈ تھے, اور ان میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ نیچے موجود ہیں کامنٹس کے اندر اور اس سے پچھلے بیچز کے اندر, وہ اپنے ریویوز دے سکتے ہیں پیج کے اوپر بھی, کامنٹس کے اوپر بھی, کہ ان کو کسی لحاظ سے, مسلکی لحاظ سے, کسی تعصب کے لحاظ سے, اگر کسی بھی استاد نے ان کے اوپر کوئی جبر کیا ہو آئیڈیولوجیکلی کہ آپ یہی موقف اپنائیں گے تو آپ ٹھیک ہے ورنہ آپ غلط ہیں. بلکہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون سی فقہ جو ہے پڑھائیں گے, آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمارا, میں پھر سے یہاں پہ بتاتے چلوں کہ ہمارا جو منہج ہے, جو میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کے اندر, خاص طور پہ فقہ کے اندر, وہ کمپیریٹو فقہ ہے. ہم اس کے اندر, ہم ایک مسئلے کے اندر اگر چار اماموں کے قول موجود ہیں, چاروں کے چاروں اماموں کے اقوال جو ہیں کلاس میں مینشن کیے جائیں گے with their دلائل.
بہرحال میں اس پر ایک اور بھی کامنٹ کر دوں, ایون ان دا دیوبندی اسکول اینڈ ایون ان دا بریلوی اسکول, فقہ کے اندر وہاں پر بھی سارے مذاہب پڑھائے جاتے ہیں.
بالکل,
اینڈ میں کہانی ترجیح کی ہوتی ہے.
ترجیح ایک الگ چیز,
لیکن یہ وہ ایک اور بات ہے. لیکن میں ان کے حوالے سے بھی ایک اچھی بات کروں گا یہاں پر.
بالکل,
وہ بھی اپنی کتابیں جب پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر مختلف, ان کی بھی کتابوں کے اندر مختلف فقہ کے ایشوز ہوتے ہیں حساب کتاب, لیکن وہ ایک ترجیحات کے لحاظ سے ہیں کہ ایک سکول کہتا ہے کہ جی ہمارے سکول کے مطابق یہ ترجیح جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے اور افضل ہے، باقی کمپیریٹو وہاں بھی ہی جاتی ہوگی. اور اگر کسی جگہ پہ تعصب ہے، عصبیت ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں، یہ ہر جگہ رہی ہیں، لیکن
دین سے لگتا ہے، نفسیات سے زیادہ لگتا ہے.
وہ ایک اور بات ہے، دلیل کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی، نفسیات متاثر ہوتی. پوائنٹ یہ ہے، کیا ہمیں ان بڑے لوگوں نے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم ان کے پیروں کی خاک نہیں ہیں، کیا ہمیں ان کی سوچنے کے طریقے کو آج کل کی یوتھ میں اور نئی نسل میں نہیں ڈالنا چاہیے؟ آپ نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا آپ نے ان کا آپس کا اختلاف پڑھانا ہے، یا آپ نے ان کے اس مائنڈ سیٹ کو پڑھانا ہے کہ وہ کس طرح ایک کانسیکوینٹ پہ ریچ کرتے تھے؟ تو اگر قوم کے اندر ان کی عزت اور رسپیکٹ اس پرسپیکٹو سے بڑھ جائے کہ امام مالک کا قد کتنا ہے، امام اوزائی کا قد کتنا ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول کے اندر کتنا قد ہے، یا امام نے قیم ابن تیمیہ کا جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کا قد کتنا ہے، تو وہ اصل مقصد ہے ان کو اپنے بڑوں کی طرح سوچنے کا شعور ڈالنا کہ وہ کسی بھی کور را چیز سے کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے چیزوں کو. اینڈ دیٹس دا پروسیس جو ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ویسٹرن علوم، آج کل کی عصری علوم، یونیورسٹی علوم، جس کے اندر 56 سبجیکٹس، آپ کے بیچلرز میں 56 سبجیکٹس ہوں گے میرے خیال سے،
48 کورسز،
48 کورسز میں سے ایک اسلام کا ہوگا،
جی ایسے ہی
47 کورسز آپ کے سارے باہر کے ہیں، انٹروڈکشن ٹو بزنس فائنانس، آرگنائزیشنل بہیویئر، کالج الجبرا، کیلکولس، سب میتھڈز ہیں ویسٹرن، ویسٹرن میتھمیٹیشینز اگر ہیں یا نہیں، یا اس کے اندر انہوں نے خوارزمی لیا نہیں ہے، لیکن جو پیراڈائم ہے چیزوں کو سالو کرنے کا وہ ان کی سوچ کا ہے. تو منج جو ہے چیزوں کو اپروچ کرنے کا، چیزوں کو سالو کرنے کا، چیزوں کو سنکرونائز کرنے کا، چیزوں کو آرڈر میں لانے کا، آرگنائز کا، وہ ویسٹرن ہے. تو 47 علوم آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے ایک دینیات آ جاتی ہے بیچاری وہاں پر، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اور جو پڑھانے والا بھی ہوگا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ایکوپڈ ہی اینڈ دے مائٹ بی ویری ویل، وہ کیسے وہ بیس کریٹ ہوگی؟ اس لحاظ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے کم قد ہیں، ہمارے پاس کم قداور لوگ رہے ہیں، کم سے کم جب ایک بچہ اتنے بڑے بڑے اماموں کی ایک پورا اکیڈیمک ڈسکورس دیکھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ اس طرح پہنچتے ہیں یہاں پر، یہ اس طرح، جیسے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات ہے، اعلام الموقعین از سچ اے ونڈرفل بک آن اصول بائی امام ابن قیم رحمہ اللہ. اس کا وہ آخری، ایک تو اس کا آخری جو چیپٹر ہے تغیر الفتوی بتغیر الازمنہ والامکنہ، فتوے میں تبدیلی کا آنا حالات، زمانے اور جگہوں کے بدلنے سے. Look at the chapter in itself.
Diverse,
کتنی ڈائیورسٹی ہوگی، کیا مطلب یہ اچھا فتوا چینج ہوتا ہے ان کے لحاظ سے، یا فتوا وہ اسٹیٹک رہتا ہے؟ یہ باب خود تفصیل مانگتا ہے آدھے پونے گھنٹے کی، یہ فصل خود تفصیل مانگ رہی. اب اس میں میں نے ایک پورا کتاب میں ایک میں نے مسئلہ پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ، اب جو غنیمت کا مال ہوتا ہے وہ کانکرر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ غنیمت کے بعد جو ہے وہ 1/5 نکالنے کے بعد جو بھی اللہ کا رسول نکال کے جو 1/4 ہے وہ پھر باہر ہو جائے گا، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا کانکررز کے لیے. حضرت عمر نے ڈیمانڈ کر دی کہ نہیں، آئی ول کیپ دیٹ ایز ویل.
تو یہ بیت المال کے اندر،
اب یہ بیت المال میں جانا چاہیے تھا، اور وہاں سے بیت المال میں آئے گا، اسٹیٹ یوز کرے گی اس کو.
صحیح.
اب جیسے ہم یہ الفاظ سنتے ہیں نا، اسٹیٹ کی پرابلم، اسٹیٹس کے ٹارگیٹس، اسٹیٹ کے آبجیکٹو، اسٹیٹس کی سنکرونائزیشن، اسٹیٹ کی خیر اور شر کا موازنہ، اسٹیٹ کے فتح، تو خود ہی اتنا ہی امپریسو ہوتا ہے کہ واو، ہمارے یہاں صرف گردن کاٹنا اور ہاتھ کاٹنا اور چوکوں پہ لٹکانا کام نہیں ہوتا. اسٹیٹ از دا موسٹ اسمارٹیسٹ تھنگ، اسٹیٹ ہی سوورن رکھی ہے نا اللہ نے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اس میں علماء بھی آتے ہیں، حکام بھی آتے ہیں. اب اس میں انہوں نے جب کہا تو ایک پورا ایشو ہو گیا کہ بھائی قرآن کی سری آیت ڈائریکٹلی پروپورشنل آیت کہہ رہی ہے کہ غنیمت کا مال کانکررز کو جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا جائے گا اسٹیٹ افیئرز کے لیے، تو آپ تو ڈائریکٹ قرآن کے حکم پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ ایک 9 رکنی بینچ تشکیل گئی، اس میں 5 اوس کے تھے، 4 خزرج کے تھے، پورا انٹلیکچوئل بینچ بیٹھا، آگے پورا وہ ایکسچینج ہوا، اور کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لا تکن دولتم بین اغنیاکم، اس والی
کئی لا یکون دولتم بین
اغنیاکم، ہاں کیا پھر سے پڑھیے گا،
کئی لا
یکون دولتم یا بین اغنیاکم، یہ والی آیت پڑھی گئی کہ ہم نہیں چاہتے کہ دولت
ایکوالٹی نہ ہو جائے،
کہ دولت ایک خاص جگہ پہ اس کا ریزرو بننا شروع ہو جائے. اسلامک پرسپیکٹو اکنامکس کا ہے کہ موبیلٹی آف
سرکولیشن،
اس کو یوز کیا گیا، اسٹیٹ اصل میں پوسٹ بڑھ چکی تھی، 2 بارڈرز بڑھ چکے تھے، پوسٹوں کے بیچ میں خرچے بڑھ چکے ہوئے تھے، جو پوری وہ عربی میں بحث ہے اگر آپ وہ پڑھیں. پوائنٹ ہے، آپ کو یہاں سے پتا چلتا ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت عمر ریچ دیٹ کانسیکوینٹ، How did Imam Malik reach to a consequent? How did Imam Abu Hanifa rahimahullah reach to a consequent?
بالکل آپ نے ہمیں یہی اور ہمارے باقی مشائخ نے بھی ہمیں یہی سکھایا.
آپ اختلاف سننا چاہتے ہیں, ہم ان کے اختلاف کرنے کے میتھڈز بھی چاہتے ہیں کہ دیکھیں, اور پھر آپ ویسٹرن تھنکرز دنیا جا کے تھنکر کے ساتھ کمپیرزن کریں, جب ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے, تو ہاؤ ول یو گیٹ ٹو نو کہ پھر وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کیسے ختم ہوگا آپ کا؟ وہ ختم ہی جب ہوتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے بھیا ہمارے پاس بھی ٹینکس تھے اچھے خاصے.
شیخ, سامنے والے کا استنباط اور اس کی دلیل کا جو سفر ہے وہ دیکھ کر ہی, اس کا قد دیکھ کر ہی انسان کے قدمے جو ہے نا وہ نظریں جھک جاتی ہیں.
کتنی محنت,
بہت محنت,
بہت محنت کی.
یہ کہنا کہ فلاں سے غلطی ہوگی, فلاں سے غلطی ہوگی, جب وہ خود کرنے بیٹھے گا نا تو بولے گا ہزاروں چانس.
نہیں, ہم نے بھی کیا ہے نا پہلے ایک زمانے کے اندر, بہت رد کیا ہم نے, ایسا زبردست رد کیا ہے. رد ہونا چاہیے, رد آج بھی کرتے ہیں, کسی لحاظ سے اس کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک محل ہے.
بالکل ایسے,
مگر اسلامک پرسپیکٹو کی 50 ڈائمینشنز ہیں جہاں وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ہم اگر اپنے بچوں کے اندر ایک میکرو ایجوکیشن بھی ڈالنے میں کامیاب ہو گئے نا صفحہ کے اندر, تو وہ اسے ایک سیمسٹر کے بعد بھی نا جا کے منہ دے سکتا ہے, سسٹم سے بات کر سکتا ہے, وہ پرسپیکٹو کی پورٹری کرا سکتا ہے کہ سر ایسے نہیں, ایسے ہوتا ہے, یہ ہے چیز, مقاصد شریعت ہو گئی آپ کی.
بالکل,
حفظ حفظ العقل حفظ النفس واٹس ایور, جو آئیں گے تو پھر سیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں, دماغ کی کنڈیاں کھلنی چاہیے. صفہ اوپنز یو دی کیز ٹو دی ہائر پرسپیکٹیوز.
شیخ, میرے حساب سے
ٹائم ہو گیا ہے, میرے خیال
ٹائم تو کافی ہو گیا ہے, لیکن جو ہے انشاءاللہ میں یہاں پہ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ میں پھر سے بول دوں. آپ لوگ سب کے سوالات جو ہیں وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں, تو بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ شیخ تو اپنے سوالوں کے جواب آپ لوگ خود ہی کر رہے ہیں اور ہمارے سوالوں کو ڈیٹین نہیں کر رہے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہاں پہ ساتھ آپ لوگوں کے لیے دو گڈ نیوز یہ ہے کہ شیخ صاحب سب نے ٹائم لیا ہے. دس تھرسڈے انشاءاللہ ونس اگین وی ول بی لائیو ان دی ویبینار شو, جس میں ہم صفحہ کے حوالے سے اور آپ کے جتنے سوالات یہاں پہ آئے ہیں ان کے حوالے سے ضرور پھر سے جواب دیں گے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دی تو اسحاق علیہ السلام کی, اور اس کے بعد یعقوب کی بھی ایک ساتھ دی تھی. تو ہم نے آپ کو تھرسڈے کے بعد سیٹرڈے کی بشارت بھی انشاءاللہ,
یہ استدلال کیا نا یہ آپ کو, یہ اس طرح کا, یہ اس طرح سے استدلال کرنا آپ کو صفہ دکھائے گا کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو بشارت دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی,
نہیں
اسحاق علیہ, تو ساتھ میں ادھر بھی دے
دی,
تو یہ آپ کو صفحہ سکھائے گا استدلال کیسے کرنا.
اتنے انتظار کے بعد جو ہے بڑھاپے میں ان کو, اتنے انتظار کے بعد ہم نے آپ کو پھر تین ویبینارز کا تحفہ دیا. یہ آج ہو گیا ٹیوزڈے, تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے, سو اسٹے ٹیوڈ, انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. اگین, جو لوگ صفا کی ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں, 2 سال کا کورس ہے, 4 سیمسٹرز ہیں, شیخ عاطف ول بی ٹیچنگ 2 کورسز ان اٹ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اچھے شاگرد بن کے جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا تو سبجیکٹس بڑھ بھی سکتے ہیں. تو کیونکہ ہم تو تیار ہیں شیخ صاحب, جتنا ہم خود
نہیں, میں اس پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ دیکھیں, شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. علم علم ہوتا ہے, کسی سے بھی حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے, لوگوں کی ہم سے پیار ہے, انسیت ہے, میرا بھی لوگوں سے بہت پیار ہے, انسیت. آئی تھنک ہر خوشبو, پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ایوری فلاور ہیز اٹس اون فریگرنس. علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے جہاں سے بھی ملے, اور میرے خیال سے اس میں سارے اساتذہ جو بھی کام کر رہے ہیں سارے اچھے قابل لوگ ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع ملے گا. اچھی, اور ایک اچھے شاگرد ایک اچھے استاد کے اندر امپروومنٹ لے کے آتے ہیں. تو جتنی اچھی کلاس آئے گی, جتنی اچھی اسٹرینتھ آئے گی, جتنی انٹلیکچوئل کلاس آئے گی, اتنا ہمیں بھی پڑھا, ہم بھی پڑھا پڑھا کے اب تھک چکے ہیں اسی روٹین میں. وی ول گیٹ گڈ کوشچنز, وی ول گیٹ گڈ فیڈ بیکس, اینڈ وی ول آلسو نیڈ ٹو ورک, کیونکہ ہم بھی کافی پرانے ہو گئے ہیں فیلڈ میں پڑھاتے پڑھاتے. تو اگر کوئی نئی چیز آئے گی, کوئی نیا چیلنج آئے گا, تو ہم بھی کتابیں کھول کے پڑھیں گے, ورنہ ہمیں تو حفظ ہی ہو گیا جو پڑھانا ہوتا ہے. سو اٹ از دا کلاس دیٹ میکس دا ٹیچر, اٹس ناٹ دا ٹیچر دیٹ میکس اے کلاس.
جتنے بھی آپ لوگوں کے مینیجیریل سوال ہیں, ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی, نوٹس کا کیا ہوگا, فیس اسٹرکچر کیا ہوگا, اس میں کنسیشن کیا ہوگا, فائنینشیل اسسٹنس کیا ہوگی, ان شاء اللہ جسٹ ڈراپ یور کامنٹ ود یور نیم اینڈ یور یو نو نمبر, ان شاء اللہ Our representative will call you inshallah very soon as possible. تو انشاءاللہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, باقی جتنے سوالات آپ کے رہ جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویبینار کے اندر ضرور آپ کو اس کے جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے. اس کے بعد صفا کی ہماری کلاسز کب سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں, نیکسٹ ویک ہماری اورینٹیشن سیشن ہے انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو ہے کلاسز جو ہیں وہ آغاز ہوں گی. شیخ عاطف ول بی ٹیچنگ عقیدہ, بلیف سسٹم, جو کریڈ ہے انسان کی, جو پورا تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کے حوالے سے انشاءاللہ شیخ صاحب جو ہے وہ کورس پڑھائیں گے, اور 4 اور کورسز ہوں گے آپ کے فرسٹ سیمسٹر کے اندر. تو جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نیچے کامنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ جلد سے جلد کانٹیکٹ کر لے. دوسری چیز کے اندر یہ ہے کہ ریکارڈنگز کا کسی نے پوچھا ہے, اس کا بھی میں یہاں پہ بتا چلوں, کوئی زیادہ سوال اس کے آ رہے ہیں جن کے ٹائم زونز کلیش ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کے اندر ضرور ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی, سرٹیفکیٹس آخر میں پرووائڈ کیے جائیں گے. میں شیخ صاحب کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے جو ہے وہ آج ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے اتنے علم کے اندر, اتنی گہرائی کے ساتھ, اتنی رسوخ کے ساتھ اس کے اندر روشنی ڈالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی جہود کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ بدرار انسٹیٹیوٹ کی پوری ٹیم کو, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو ہے جتنی بھی خدمات ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آپ سب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے, اسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ ڈالتا ہے. یہ علم جو ہے وہ اندھیروں کو, ان دلوں کو جن کے اندر اندھیرے ہوں, بغض ہو, حسد ہو, ان کو قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگے, اللہ سے دعا مانگے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اس کو دین کا علم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے قبول فرمائے. اس کے اندر جو کچھ بھی غلطیاں تھیں وہ سب ہماری تھیں, اور جو کچھ بھی خیر تھی وہ اللہ کا تھا اور اللہ ہی کا رہے گا. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سے انشاءاللہ تھرسڈے کو ضرور ملاقات ہوگی.